بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بھیجئے محمد علیہ وسلم. تربیت اولاد کے عملی اصول کے عنوان سے درس نمبر 9. بہت تیز رفتاری سے بس اب یہ سلسلہ آئندہ 2 دروس کے اندر انشاءاللہ اختتام پذیر ہو جائے گا. بغیر کسی تمہید میں جائے براہ راست موضوع کے اوپر گفتگو شروع کر دیتے ہیں. دیکھیے علماء کرام کے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب اس شخص کو دیا جائے گا جس کے اہل و عیال دین سے جاہل اور غافل رہ جائیں. باپ اگر ایڑی چوٹی کا پسینہ بہا کر کمانے کی مشین بنا ہوا ہے اور اس وجہ سے وہ اس کو ایک ایکسکیوز سمجھتا ہے کہ میں اس بنا پر اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر پاتا کہ مجھے بہت زیادہ ان لوگوں کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے رات و دن, تو وہ یہ بات سمجھ لے. علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس کی اولاد جہنمی ہو گئی تو اس کمائی کا کیا فائدہ ہے, اور ایسی اولاد جس کے لیے اتنی تگ و دو کر رہا ہے اور رات و دن اس نے ایک کیا ہوا ہے, قیامت کے دن یہ اپنے باپ کی دشمن بن جائے گی. باقاعدہ سورۃ تغابن میں بھی یہ بات کہی گئی ہے کہ بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں, تو تم ان سے ہوشیار رہو. یہ دشمن کب بنتے ہیں؟ جب ان کی صحیح تربیت نہ ہو تو یہ اولاد قیامت کے دن ان کی دشمن بن جائے گی. حرام کمائی اگر گھر میں لے کر آئے تو یہ بیوی جس کے لیے آسائشیں مہیا کر رہی ہیں اس دن دشمن بن جائے گی, اور یہ لوگ فریادیں کریں گے اور دعائیں دیں گے کہ پروردگار اس شخص کو مزید عذاب دے کہ اس نے ہماری صحیح تربیت نہیں کی تھی, اس نے ہمیں رزق حلال کما کر نہیں کھلایا تھا جس کی وجہ سے ہم خراب ہو گئے. ورنہ جو حقیقی اور صحیح تربیت جس کو دے دی جائے ایسی اولاد کے لیے تو سورہ فرقان میں باقاعدہ اس کو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا گیا ہے. قرۃ عینی یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک, وذریاتنا قرۃ اعین, کہ اولاد ایسی اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک کب ہوتی جب وہ واقعی صحیح تربیت یافتہ اولاد بنتی. دیکھیے جو اولاد ہے سورہ انفال میں اس کو مال کو بھی اور اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا ہے. فتنہ سے مراد لڑائی جھگڑے, فتنہ و فساد جس طریقے سے کہا جاتا ہے مستعمل ہے ہماری اردو زبان میں ان معنوں میں نہیں بلکہ آزمائش کے معنوں میں. تو یہ ایک آزمائش ہے, اس آزمائش کے اوپر پورا اترنا ہے. اچھا اولاد کو اور گھر والوں کو جہنم میں جانے سے کیسے بچانا ہے وہ قرآن نے خود اس کی ایک مثال بیان کی ہے سورہ تحریم میں, قو انفسکم و اہلیکم نارا, اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے جہنم کی اور اپنی اولاد کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے. یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر ایک تضاد نظر آ رہا ہے. بعض اوقات افراد خود تو آگ سے بچ رہے ہیں, صف اول کے نمازی بھی بن گئے ہیں, صدقات بھی دے رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, سارے مستحبات کے اوپر بھی عمل ہو رہا ہے, لیکن ان کی اولاد کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں تو زمین و آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے. ان کا رخ اگر مشرق کی طرف ہے تو وہ بالکل برخلاف مغرب کی سمت میں نظر آ رہے ہیں. یہ روحانیت کے مسافر ہیں تو اولاد گناہوں کے سیلاب کے اندر بہتی چلی جا رہی, تو یہ دورنگی جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گی. تو اب ایسے نیک افراد جو ہیں جب ان سے آپ یہ سوال پوچھیں کہ بھئی ایسا کیوں ہے, آپ تو اتنے زیادہ روحانیت کے مسافر ہیں, پھر آپ کے گھر والے کیوں آخر اس پر उस सिमत की तरफ नहीं है जिस पे आप हैं। तो वे कहते हैं कि भाई हम क्या करें, बीवी को भी हम बहुत समझाते हैं, औलाद को भी बहुत समझाते हैं, लेकिन मजबूर हैं, हमने तो अपना फरीजा अदा कर दिया। तो परवरदिगार ने इस आयत के अंदर आग की मिसाल देकर ये बात वाजे कर दी है कि घर वालों को जहन्नुम की आग से जलने से कैसे बचाना। कि अगर औलाद, देखिए फकत ये काफी होगा कि अगर औलाद आग के अंदर गिरने जा रही है, आपको लाजमी, आपको पता चल रहा है कि इसका नतीजा ये निकलेगा कि जरूर जहन्नुम की आग में गिर जाएंगे, तो क्या ये कह सकते हैं ये वालिदैन कि हम बरी उज़िम्मा हो जाएंगे, भाई क्या करें, हमने तो अपने तौर पर तुमको बता दिया था, अब औलाद खुद ही नसीहत कबूल नहीं कर रही तो हम क्या कर सकते हैं? तो क्या वालिदैन बरी उज़िम्मा हो जाएंगे इतना सा कहने पर? नहीं, इसके मायने ये है कि अगर वो वाकई हकीकी वालिदैन है तो उनकी रातों दिन की नींद हराम हो जानी चाहिए। अरे इसका लाजमी नतीजा ये निकल रहा है कि ये जहन्नुम की आग में जलेंगे, ये जिस गुनाहों के अंदर है। तो जब तक ये अपनी औलाद को आग से दूर ना कर लेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे, जो कि हकीकी वालिदैन का खासा होना चाहिए। तो जब आम दुनियावी आग से बचाने के लिए इतने तगोदौ की जाती तो फिर उस आखरत जिसकी कोई इंतहा नहीं है, उस जहन्नुम की आग के अजाब की, उससे बचाने का वैसा इकदाम क्यों नजर नहीं आता? फकत जबानी जमा खर्च की हद तक दुनिया के अंदर क्यों महदूद हुआ जा रहा है? बहुत ज्यादा देखिए मेहनत करना पड़ती है तरबियत औलाद में, ये कोई आसान काम हकीकत है कि आसान काम नहीं है। ये जो बच्चे जिनको कहा जाता है कि ये फूल जैसे जो बच्चे होते हैं, ये फूल यूं ही नहीं खिल जाते, इसके लिए बीज को दफन होना पड़ता है। जुमला है, ये फूल जो है बच्चों के ऐसे नहीं खिलते, इसके लिए बीज को दफन होना पड़ता है। वालिदैन को बहुत मेहनत करना पड़ती है, अपने आप को फना कर देना पड़ता है उनकी तालीम और तरबियत में, और हद से ज्यादा काविश करना पड़ती है। तो इनमें कुछ चीजें ऐसी नजर आती हैं कि फिर ये बेहतर औलाद जिसे कहा जाए। तो देखिए, अगर जब भी रिवायात के अंदर पैगंबर इस्लाम ने हजरत अबू ज़र ग़फ़ारी से फरमाया था कि जब कोई शख्स खुद नेक हो जाता है तो अल्लाह उसके नेक हो जाने के वसीले से उसकी औलाद और उसकी औलाद की औलाद को भी नेक बना देता है। यानी सिलसिला जो है नेकी का नस्लों तक चलता रहता है। शर्त यह है जो हम हर दफा फर्ज अव्वली व तरबियत औलाद के अंदर करार देते हैं अपने तकरीबन हर लेक्चर में, कि वालिदैन को खुद नेक बनना पड़ेगा। ये सुना सोचेंगे भाई हमारी तो जैसे 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 तैसे जिंदगी गुजर गई है और अभी भी गुजर रही है, कम से कम औलाद तो हमारी ठीक हो जाए तो उसके लिए बस कोई एक इंतजाम कर दिया किसी मौलाना का या किसी मदरसे में 2 घंटे को भेज दिया तो काफी समझ लिया इसको। नहीं, उसके पूरा उनको आमाल नेक करके उसको शो करना है बच्चे के सामने, खुद सहले हकीकतन बनना है, फिर उसकी ये बरकत होगी कि औलाद भी नेक बनेगी और औलाद की औलाद और सिलसिला नस्लों के अंदर ही इस तरह से जारी और सारी रहे। वो घर कहा जाता है कितना अच्छा घर है कि जहां बाकायदा अहकामात इस्लामी की तालीम दी जाती हो घर में, और शायर इस्लामी को जिंदा किया जाता हो, इस्लामी अहकाम और फिक्र जो है वो वगैरह सिखाई जाती हो। यानी बेहतरीन घरों से घर जो है उसको करार दिया गया। और हर शख्स ये चाहता है कि भाई जो इसकी मैं इतनी तरबियत कर रहा हूं, ये खुद बाद में मेरी खिदमत गुजार हो सब कुछ। तो इसके लिए भी यही है कि देखिए वालिदैन जो है खुद अपने वालिदैन का एहतराम शुरू कर दें, क्योंकि ये भी रिवायत के अंदर आया है कि तुम अपने बुजुर्गों का एहतराम करो ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा एहतराम करें। अब मसला ये है कि ये तो अपने बुजुर्गों का एहतराम कर नहीं रहे। मसलन माँ जो है वो अपनी सास से लड़ रही है और बाप जो है वो अपने ससुराल वालों से लड़ रहा है, ये अपने घर वालों से ये सब अफराद लड़ रहे हैं। इनके घर में अगर बुजुर्गों का कोई एहतराम नहीं तो ये बच्चे भी कल आपका एहतराम नहीं करेंगे। जिस तरीके से कहा जाता है ना, जो किसी बूढ़े की बुजुर्गी की वजह से पैगंबर फरमाते हैं इज्जत करेगा, तो खुदा उसके बुढ़ापे में किसी जवान को फराहम करेगा जो उसकी अपने बुढ़ापे में उसका इज्जत और इकराम करेगा। यानी जो आप इस दुनिया में इस वक्त कर रहे हैं, ये जो घर में अफराद, हर शख्स के घर में कुछ ना कुछ बुजुर्ग होते हैं, उनके इज्जत और एहतराम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। और आगे बढ़कर उनके काम करना, मसलन बहू ये समझे कि ये सास है, बूढ़ी है, बीमारियां इसके साथ लगी हुई हैं, मसलन इंतकाल हो गया है उसके, मसलन शोहर का, बहुत से घरों में इस तरह से भी होता है कि बेवाएं जो हैं वो मौजूद हैं, तो उनका जरा ज्यादा इकराम ख्याल, उनके साथ कोई बदतमीजी ना हो, कोई उनके इज्जत और इकराम में कोई कमी ना आने पाए, थोड़ा सा आगे बढ़कर पैगंबर की इस हदीस को दिमाग में रखते हुए कम से कम इसको इकदाम कर लें। तो खुद जब इसका अपना बुढ़ापा आएगा तो फिर ये देखेगी कि किस कदर उसको गैब से उसके लिए उसका ख्याल करने वाले जो है वो अफराद उसको मिलेंगे। अच्छा ये अब ये तो थोड़ी सी ताकि एक दिमाग में क्लियर हो जाए कि किस तरह से तरबियती औलाद के सिलसिले को आगे बढ़ाना है। अब कुछ ना कुछ थोड़ी देर के लिए हम 5-10 मिनट के लिए कुछ वाजिबात के मसले बयान करते हैं जो कि एक सीरीज में हमारे चल रहे हैं कि मसलन पहले हमने रजात का मसला जो है वो बयान किया, उसके मसाइल, फिर हमने हजानत के मसले जो है वो डिस्कस किए, फिर उसके बाद पिछली बार विलायत का मसला शुरू किया था जिसमें से एक पार्ट कंप्लीट हुआ था बच्चे के माली उमूर के मुतालिक। आज उसका जो दूसरा पार्ट है और वो है बच्चे के अजदवाजी उमूर का मसला। तो बच्चे के भी और कंवारी लड़की के जो अजदवाजी उमूर का मसला है वो अब डिस्कस आज हम करेंगे। देखिए पहले तो नाबालिग बच्चे के एतबार से एक बात याद रहे, क्योंकि बहुत सी चीजें टीवी के ऊपर बहुत ज्यादा मनफी शोहरा जो है बहुत सारी चीजों का हो जाता है और लोग भी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। बच्चे के बाप और दादा को बच्चे की अजदवाजी उम्र तय करने का इख्तियार है, हत्ता कि वो अगर पर खुदा की तरफ से एक इख्तियार मिला हुआ है, हत्ता कि अगर वो कोई मसलियत समझें तो अपने नाबालिग बच्चे का या नाबालिग बच्ची का भी निकाह कर सकते हैं। अच्छा अब जब बालिग हो जाएगा ये बच्चा तो इसके बाद उसके पास मुकम्मल इस बात का इख्तियार रहेगा कि अगर वो उस निकाह के अंदर कोई खराबी देखे तो वो अपने निकाह को खत्म कर सकता है या फस्क करना जिसे कहा जाए ऐसा कर सकता है, उसका खास तरीका है। लेकिन अगर उस लड़के या लड़की ने उस बाप और दादा की किए गए रिश्ते के अंदर कोई खराबी नहीं देखी तो उसको निकाह को खत्म करने का इख्तियार नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो चाहे तो फिर वो तलाक वाला जो एक पूरा प्रोसीजर है वो फॉलो करना पड़ेगा। निकाह को खास तरीके से फस्क या खत्म करना वो वाला इख्तियार खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद अगर वो फिर भी नहीं चाहता बाप और दादा के उस रिश्ते को कायम रखे तो वो तलाक वाले प्रोसीजर को फॉलो कर सकता है कि जिस तरह प्रॉपर एक तलाक दी जाती है। नाबालिग की शादी अगरचे बास फोकाह ने कहा कि मकरू करार दी है, लेकिन बहरहाल बाप और दादा को इख्तियार है, क्योंकि हम जाहिर है वली के कुछ इख्तियार भी इसमें डिस्कस कर रहे हैं तो उस वजह से ये मसला ताकि दिमाग में रहे। अच्छा लेकिन क्या बालिग, मसलन लड़की बालिग हो गई, क्या उसकी मर्जी के बगैर उसकी शादी की जा सकती? अच्छा लड़का अगर बालिग हो जाए तो उसके ऊपर तो बालिग होने के बाद तो लड़का और लड़की दोनों के एतबार से खत्म हो जाता है, क्योंकि विलायत जो है फकत बुलूग की हद तक रहती है, लेकिन लड़की पर अजदवाजी उमूर में विलायत बाकी रहती है कंवारी लड़की के लिए बाप और दादा की। अच्छा या तो ये है कि वली ने बालिग होने के बाद इसकी जबरदस्ती किसी जगह मसलन शादी कर दी, या कंवारी लड़की ने वली की इजाजत के बगैर किसी जगह शादी कर ली। ये दिन रात और दिन ये केसेस जो है हमारे मदरसे के पास भी बहुत इस किस्म के आते हैं, और ताकि ये आपके सामने दिमाग में रहे और हमारे मौजू से मुताल्लिक भी है। तो अब क्या होगा, बहुत से उलमा तो बाकायदा फतवा देते हैं, कुछ एहतियात वाजिब वगैरह लगाते हैं कि इसमें अगर मसलन बाप और दादा ने उसकी इजाजत के बगैर कर दी है शादी तो या तो अब इस लड़की को राजी करें कि ये तैयार हो जाए दिल से, या ये कि इसको तलाक दिलवाएं अगर उन्होंने खुद से ऐसा कर दिया। और बहुत से उलमा तो कहते हैं कि ऐसा जो किया गया निकाह खैर बातिल भी, या लड़की ने मसलन अगर ऐसा कर लिया है तो एक चीज कहलाती है लड़की का मौल्लक हो जाना, यानी उलमा फरमाते हैं कि कंवारी लड़की ने अगर बाप की रजामंदी के बगैर शादी की तो अब ये मौल्लक हो जाएगी, या तो ये अपने वली को राजी करे, बाप और दादा को राजी करे, और अगर वो राजी नहीं होते तो इसको जो उसने निकाह किया है उससे उसको तलाक लेना पड़ेगी। कुछ तो बातिल भी कहते हैं और कुछ कहते हैं कि ये मौल्लक हो जाने वाली कैफियत हो जाएगी, इन दोनों में से एक काम इसको करना पड़ेगा। यानी वो ये नहीं सोच सकती कि वो कहे कि भाई जब क्योंकि मेरे वालिद की इजाजत नहीं थी और मैंने निकाह कर लिया तो ये तो निकाह ही नहीं हुआ तो ठीक है अब मैं किसी और जगह शादी कर लेती हूँ जहां वालिद कर रहे हैं मेरे, नहीं ये भी नहीं कर सकती वो। और वो ये भी नहीं कर सकती कि ठीक है अब निकाह तो हो गया, वालिद की इजाजत थी या नहीं थी, अब उस शख्स के साथ रहना शुरू कर दे वो एक और हराम काम हो जाएगा, वो भी नहीं कर सकती। ये मौल्लक हो जाएगी, ना ये शादीशुदा समझी जाएगी ना ये बगैर शादीशुदा समझी जाएगी। तो ये बहुत बड़ा मसला पेश आ जाता है और ایسے افراد جن سے اس قسم کا اس نے نکاح کیا ہوتا ہے وہ بعد میں بہت پرابلم بھی کھڑی کرتے ہیں اور طلاق بھی نہیں دے رہے ہوتے، لڑکی کی کسی دوسری جگہ شادی بھی نہیں ہو رہی ہوتی، تو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہی ہو جاتا ہے۔ تو اچھا یہ ایک بات اور بتا دی جائے کہ یہ مسئلہ جو تھا، یہ کنواری لڑکی کی شادی کا مسئلہ تھا کہ وہ باپ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتی، لیکن مثلا اگر کوئی غیر کنواری ہے، مثلا وہ شادی اس کی ہو گئی تھی پہلے اور ازدواجی زندگی مثلا وہ گزار رہی تھی، اور اس کے بعد پھر مثلا یا تو وہ بیوہ ہو گئی یا اس کو طلاق ہو گئی، اس کے بعد وہ کوئی دوسری شادی کرنا چاہے، تو اس کے بعد پھر باپ اور دادا وغیرہ کی اجازت ختم ہو جاتی ہے، صرف یہ فقط کنواری لڑکی کا مسئلہ ہے۔ اس میں البتہ ایک بات اور بتا دی جائے، کیونکہ یہ معاشرے کے اندر ہر قسم کے جو ہے کیسز آ رہے ہوتے ہیں، نہیں پہلے ایک اور بات بتا دی جائے اس میں کہ باپ اور دادا میں سے جو بھی موجود ہوں ان سے اجازت لے لی جائے، باپ موجود ہے تو باپ سے اجازت لے لی جائے، باپ کا انتقال ہو گیا دادا موجود ہیں تو ان سے اجازت لے لی جائے، یعنی دونوں اس معاملے میں یعنی برابر ہیں، اور باپ و دادا اگر دونوں موجود ہوں تو کسی ایک کی بھی اجازت لے لی جائے تو کافی، کنواری لڑکی کو شادی کے لیے ان میں سے کسی کی بھی اجازت لے لے تو یہ کافی ہے اس کے لیے۔ مسئلہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے اگر باپ اور دادا میں اختلاف ہو جائے، مثلا باپ تو تیار نہیں ہے، لڑکی نے کنواری لڑکی نے شادی کر لی ہے اور باپ جو ہے وہ مثلا تیار نہیں ہے لیکن دادا جو ہے وہ تیار ہے، یا الٹا کر لیں دادا تیار نہیں ہے اور باپ تیار ہے، تو دونوں کی اجازتیں جب بالکل یکساں ہیں اور باپ اور دادا میں اگر اختلاف ہو جائے تو بقول ہمارے استاد محترم کے یہاں پہ دادا گیری چلے گی، یعنی اس میں اس موقع پر دادا کا فیصلہ جو ہے وہ مقدم سمجھا جائے گا۔ اچھا ایک تو یہ مسئلہ ہوا۔ اچھا بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب ولی کی اجازت ساقط بھی ہو جاتی، یعنی کنواری لڑکی بغیر باپ کی اجازت کے بھی شادی کر سکتی، اس میں سے ایک موقع وہ ہوتا ہے کہ آج کل بھی بہت اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں جب ولی غائب ہو جائے، یعنی مثلا دادا کا تو پہلے انتقال ہو گیا تھا، باپ بھی جو ہے کسی دوسرے ملک گیا، پتہ نہیں چل رہا ہے اس کا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا آج کل اٹھا کے لے گئے، پتہ چلا باپ جو ہے وہ گوانٹانامو بے کی جو جیل میں وہاں پر ہے، اس سے کوئی رسائی بھی نہیں ہے اس تک، مثلا بہت سارے اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ جب ولی جو ہے مثلا غائب ہو اور اس سے اجازت لینا ممکن نہ ہو، تو ایسے موقع پر پھر ولی کی اجازت ساقط ہو جائے گی۔ اب ساری زندگی بوڑھی تو نہیں ہو جائے گی اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے کہ باپ کی میں تلاش کروں، تلاش کرنا ہے، لیکن اس کے بعد اگر مایوسی ہو جائے اور باپ سے کسی صورت اجازت ملنے کا امکان پیدا نہ ہو تو پھر ولی کی اجازت ساقط ہو جاتی ہے۔ دوسری ایک چیز ہے کہ جب لڑکی کنواری نہ رہے، لیکن ابھی آپ کو یہ بات بیان کی گئی کہ اس صورت میں یہ وہ والے معاملے کی بات ہے کہ جب شادی اور شرعی طریقے سے ایسا معاملہ ہو، یعنی طلاق اس کو ہو جائے یا مثلا بیوہ ہو جائے اور ایک ازدواجی زندگی ایک نارمل طریقے سے گزار رہی تھی جس کے نتیجے میں وہ کنواری نہ رہی تھی، تو پھر اب باپ کی اجازت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن ایک اور مسئلہ جو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر لڑکی نے حکم خدا کی مخالفت کرتے ہوئے جو ہے وہ کنواری نہیں رہی ہے تب بھی اس کو احتیاط واجب کی بنا پر باپ کی اجازت ضروری ہے، تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ لیکن دیگر مراجع کہتے ہیں کہ بہرحال اگر وہ کنواری اب نہیں رہی ہے تو اس کی اجازت ختم ہو جاتی ہے، لیکن آغا سیستانی نے خاص طور پر احتیاط واجب لگا کر اس صورت میں بھی باپ کی اجازت کو لازمی قرار دیا۔ اچھا اب ایک مسئلہ یہ ہے جو تیسرا کہا جاتا ہے کہ جس موقع پر اجازت ساقط ہوتی ہے، کہ جب لڑکی کو شادی کی حاجت ہو، ورنہ وہ گناہ میں پڑ جائے گی، مثلا اس کی پسند کا شخص اس کا کفو بھی ہو یا کف جسے کہا جاتا ہے، یعنی اس کا ہم پلہ ہو، باپ کوئی متبادل رشتہ بھی پیش نہ کرے اور اس رشتے کے لیے بھی اجازت نہ دے لڑکی کی، یعنی یہ بعض اوقات اتنے پیچیدہ قسم کا جو ہے وہ کیس ہو جاتا ہے، یعنی وہ لڑکی کو شادی کی حاجت بھی ہے ورنہ وہ گناہ کے اندر گرفتار ہو رہی ہے، اس کی جس سے وہ شادی کرنا چاہ رہی ہے وہ اس کا کف بھی ہے، یعنی وہ شرن اور عرفن اس کا ہم پلہ ہے، ابھی جس کے آگے چل کر تفصیل آئے گی، اور باپ کوئی متبادل رشتہ بھی پیش نہیں کر رہا ہے۔ ایک ہوتا ہے نا باپ نے متبادل رشتہ پیش کر دیا، ٹھیک ہے تمہیں یہ ہے لیکن تمہارے یہ بالکل برابر کا رشتہ یہ میں پیش کر رہا ہوں جس کی ابھی آگے چل کے اس کی بھی تفصیل آئے گی، لیکن یہ جو ہے کہ شادی کی حاجت ہے، پسند کا شخص کف بھی ہے، باپ متبادل رشتہ بھی پیش نہیں کر رہا ہے اور اجازت بھی نہیں دے رہا ہے اس کو اس شادی کی، اس موقع پر پھر اس کی اجازت باپ کی ختم ہو جاتی، तो अच्छा अब लेकिन लड़की को जो शख्स मसलन पसंद आ रहा है, आमतौर पर तो इसी तरह के केसेस होते हैं, वो शरण और उर्फन उसका हम पल्ला भी नहीं, कुफ नहीं, तो बाप जो है वो मना कर रहा है। मसलन शरण कुफ नहीं है कि क्या मायने है? मसलन ये कि लड़का गैर शिया है, गैर शिया है, बाप को पता है कितनी कॉम्प्लिकेशंस होंगी कि ये दूसरे मजहब के अंदर जो है वो शादी करना है। वो काफिर वाफिर का मामला नहीं है, मसलन गैर शिया है, वो किसी और फिरके से ताल्लुक रखता, मसलन जो है वो वहाबी अकीदा है या कोई भी इस तरह से है, और बाप को पता है कि बाद में बड़े मसाइल इसके साथ हो जाएंगे, तो बाप उसको पसंद नहीं कर रहा और मना कर रहा है, तो फिर वो इजाजत के बगैर बाप की शादी नहीं कर सकती, चाहे बाप कोई मुतबादिल रिश्ता भी पेश ना कर रहा हो, क्योंकि ये उसका शरण कुफ नहीं या उर्फन हम पल्ला नहीं। मसलन फकत माली हैसियत की बात नहीं, मसलन मिसाल दे दूं कि मसलन एक लड़की है, वो एक मुज्तहिद की, एक बहुत बड़े आलिम की, बहुत बाइज्जत खानदान की लड़की है, और जिस लड़के से शादी करना चाह रही है, मसलन वो कोई उर्फन, यानी मैं कह रहा हूं कि उर्फन हम पल्ला, मसलन वो नाई है, कसाई है, खाकरोब है, मसलन चलें अगर वो नहीं, मैं इसकी, तो अब क्या हो रहा है कि उर्फन ही हम पल्ला नहीं, तो अब चाहे वो शरण कुफ ना हो या उर्फन कुफ ना हो, और बाप चाहे मुतबादिल रिश्ता पेश भी ना करे, और बाप मना करे कि नहीं मैं इससे शादी, चाहे इस्लाम के लिहाज से वैसे जायज है होना शादी, लेकिन बाप की इजाजत नहीं दे रहा इस मसले में, तो लड़की ये नहीं समझ सकती कि बाप तो मुतबादिल रिश्ता ही पेश नहीं कर रहा है, इस वजह से अब इसकी इजाजत खत्म हो जानी चाहिए। नहीं, इस सूरत में उसकी इजाजत खत्म नहीं होगी। शरण और उर्फन जब कुफ होता है और बाप नहीं इजाजत दे रहा होता और बिला वजह का बहुत सारी चीजें कर रहा होता है, मसलन वो कह रहा है नहीं सैयद और गैर सैयद का मसला बाप ने छेड़ा हुआ है, अब किसी भी मुज्तहिद का भी मसला नहीं है और किसी भी एतबार से इसके अंदर ऐसा कोई मसला नहीं है, कितनी एक खानदान से तो बल्कि मैं ऐसे वाकिफ हूं कि जिसमें 6 या 8 लड़कियां थी और बाप इन्नी की बिन्नी इस तरह की चीजें निकालते रहे, और आठों की आठों लड़कियां बाप के इंतकाल तक उनकी शादी ना हुई, और बमुश्किल फिर शायद 1 या 2 लड़की की बाप के इंतकाल के बाद बमुश्किल शादी हो सकी, बाकी सब घर में इसी तरह से बैठी बूढ़ी हो गई। तो बहुत सारे देखिए इस तरह के जो है मसले पेश आ रहे होते हैं और ये चीजें हो रही होती हैं, तो ऐसे मौके पर इस किस्म का जो कोई बाप है कि इतने मफासिद हो रहे हैं और उसने छोटी छोटी बातों के ऊपर वो लोगों के रिश्ते मना कर रहा है, तो उस मौके पर फिर वली की इजाजत खत्म हो जाती है, जब वो ना कोई मुतबादिल रिश्ता पेश कर रहा है, बिला वजह मना किए चले जा रहा है बहुत फजूल किस्म की बातों पर, तो फिर ऐसे मौके पर ये मसला पेश आ सकता है। अच्छा, अब अलबत्ता एक मसला और आता है कि अगर कमारी लड़की और बाप दोनों हम पल्ला रिश्ता पेश कर रहे हो, वो जो पेश कर रही मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, देखिए मेरा शरण भी कूफ है, मेरा उर्फन भी कूफ है, बाप ने कहा नहीं लेकिन मुझे ये पसंद नहीं, मुझे तो मसलन अपने जो है वो भाई का बेटा या मसलन अपनी बहन का जो बेटा है उससे तुम्हारी शादी करनी है, वो देखो शरण भी कूफ है, तुम्हारा उर्फन भी कूफ है, अब कमारी और लड़की और बाप जो है उसका दोनों हम पल्ला रिश्ता पेश कर रहे हो, तो फिर क्या मसला होगा? तो इस सूरत में भी अगर वो बाप वाले रिश्ते को भी मना कर सकती है, लेकिन बाप इस सूरत में अगर मना कर रहा है तो अब लड़की उस लड़के से भी शादी नहीं कर सकती, बाप ने मुतबादिल रिश्ता पेश कर दिया और उसका शरण और उर्फन कुफ भी है, ठीक है दिल से वैसे उसको पसंद नहीं आ रहा और वो ज्यादा पसंद हो कोई और जिससे वो करना चाह रही है, लेकिन इस मौके पर बाप की इजाजत खत्म नहीं होगी, ठीक है अलबत्ता ये अख्तियार भी इसके पास रहेगा कि तुम चाहो तो इससे भी मना कर दो जो जो बाप पेश कर रहा है, यानी तुम पे कोई जबरदस्ती नहीं कि उसने पेश कर दिया तो उसी से ही करना, अलबत्ता बहरहाल ये बात याद रहे कि अगर मसलन बाप भी राजी है और लड़की भी राजी है, तो फिर शरण और ये जो कुफ वाला जो मसला ये खत्म हो जाएगा, ये उस वक्त खास तौर पर पेश आता है कि जब कोई बाप की इजाजत के बगैर वो शादी करना चाह रही हो, तो फिर ये देखा जाता है कि शरण और उर्फन कुफ है या नहीं, लेकिन बाप भी राजी है, ठीक है स्टेटस इसका बहुत कम है, हमारे खानदान से इतना मैच नहीं करता, लेकिन बाप कहता है ठीक है मैं राजी हूं, और लड़की भी राजी है, तो फिर ये वाला मसला फिर मोमिन मोमिन का कुफ है, जिस तरीके से कहा जाता है, बल्कि किसी मुसलमान से भी फिर वो शादी कर सकती है, लेकिन यहां पर जब ये इनके विलायत का बाप की इस तरह का मसला पेश आता है और वो मना करे, तो फिर यहां पर मसला शुरू होता है। और ये बात और ये रहे कि बड़े मसलन बाप का इंतकाल हो गया या मसलन दादा का भी इंतकाल हो गया, तो तो बड़े भाई, माँ, चचा, ताया या दादी वगैरह के पास ये विलायत ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि उसके बाद फिर लड़की को मुकम्मल बालिग लड़की के हाथ इख्तियार ये आ जाता है कि वो फिर इनमें से किसी से भी इजाजत लिए बगैर वो शादी कर सकती है फिकही और कानूनी और शरई तौर पर। अलबत्ता जाहिर है कि बेबरकती जरूर होगी कि इन तमाम करीब तरीन मुखलिस रिश्तेदारों के होते हुए अपनी कुछ वो चलाए और इन सबसे, तो ऐसे जो अमूमन शादियां होती फिर उनके आमतौर पर जिंदगी में अच्छी नहीं गुजरती और एक बेबरकती उनकी जिंदगियों में रहती। तो हर सूरत में घर वालों को, करीबी रिश्तेदारों को, मुखलिस खूनी रिश्तेदारों को तैयार करके और फिर उसके बाद इस इकदाम को करना चाहिए। अच्छा, यानी लेकिन ये शरण हम बात कर रहे हैं कि बड़े भाई की इजाजत की जरूरत नहीं होती, माँ की इजाजत की जरूरत नहीं होती, अगर बाप और दादा नहीं है, चचा, ताया, दादी या इस तरह के और रिश्तेदारों की भी कोई जरूरत नहीं होती। अलबत्ता हमारे जो अहले सुन्नत को कहा है उनमें से बाज चचा को के पास विलायत का चले जाना, मुंतकिल हो जाना उसको समझते हैं, लेकिन हमारे यहाँ चचा और ताए वगैरह की भी विलायत के एतबार से कोई मसला नहीं है। तो अगर दोनों बाप और दादा इंतकाल कर गए हैं और लड़की खुद मुख्तार है तो वो शादी कर सकती है। अलबत्ता आगा सिस्तानी फरमाते हैं कि कंवारी लड़की, यानी मसलन बाप वगैरह मौजूद हो अगर, और कंवारी लड़की है, अगर कंवारी लड़की खुद मुख्तार है, मसलन खुद कमाती है, खुद खाती है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, तो फरमाते हैं कि एहतियात वाजिब की बिना पर इस लड़की को भी कंवारी अगर है तो बाप की इजाजत जरूरी है, चाहे वो खुद मुख्तारी क्यों ना हो। और अगर कोई खुद मुख्तार नहीं है, बाप की जेर किफालत रहती है, अमूमी जिंदगी की जो उसकी चीजें उसमें खुद मुख्तार नहीं है वो, तो उसको तो फतवे की बिना पर इजाजत लेनी जरूरी है, और अगर खुद मुख्तार है तो एहतियात वाजिब की बिना पर इजाजत लेना जरूरी है। यानी मुकाम अमल में तो तकरीबन दोनों जगह उसको इजाजत लेनी है आगा सिस्तानी के नजरिए में। बाकी जो उलमा है वो बहरहाल उनका भी मसला मैं नहीं बता रहा। अच्छा, इसमें अभी तक भी जितने मसले इसके अंदर बयान हुए हैं, इसमें मेरा मशवरा ये है कि कोई भी कोई रास्त इकदाम करना चाहे तो हमेशा इन तमाम कामों में जाने से पहले उलमा के पास जरूर जाए, सारा मसला अपना रखे, फिर वो सही तौर पर आपको बताएंगे कि कब बाप की इजाजत खत्म हो रही है, कब बाप की इजाजत खत्म नहीं हो रही है। वरना ऐसी लड़कियां मौलक हो जाती हैं, उसमें से हमने 99.99% लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ जलीलो ख्वार होते हुए देखा। जो भी इस किस्म का कोई इकदाम अगर कोई कर रहा हो आपके इर्द गिर्द में भी कोई मोमिना इस लिहाज से, तो बहुत सारे देखिए इस किस्म के मामला होते हैं। आजकल टीवी वगैरह जो है वो जिस एतबार से आजाद है और टीवी के ऊपर जो ड्रामे आ रहे हैं उससे इन्फ्लुएंस होकर और बगैर बाप की इजाजत के, तो बहुत एक तो गुनाहों की जिंदगी पूरी गुजरती है उनकी, और अगर मिलफर्स किसी शरई एतबार से हो भी जाए तो बहुत ही उनकी समझने के लिहाज से वो रिजेक्टेड बिल्कुल समझी जाती हैं माशरे से, किसी जगह उनकी कोई इज्जत नहीं होती, बाप की जिंदगी में बहुत तकालीफ में गुजरती हैं, एक बहुत बड़े अजाब का शिकार हो जाती हैं हकीकतन। और दूसरा खासतौर पर जब शादी जिसने की है वो तलाक भी ना दे रहा हो तो मामला और बहुत ज्यादा गंभीर हो जाता है। उधर बाप भी अकड़ जाता है कि मैं भी इजाजत नहीं दूंगा, और उधर वो शोहर भी तलाक नहीं दे रहा होता, तो ये बिल्कुल मौलक होकर रह जाती है। बड़े मसले हैं, तो हमेशा कोई भी इस पे बस सिर्फ अभी के जो मसले सुने उसके मुताबिक भी इकदाम ना करे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस बीच में आती हैं, उलमा के पास जाकर सही तौर पर फिकही मसला जो है वो अपने लिए पता करे। अच्छा, अब आ जाइए, तो फिकही मसले थे, अब आ जाइए जो कि हमारे तरबियत के और जो उमूर है उसके अंदर बात शुरू होती है। देखिए, बच्चे की जिस्मानी तरबियत भी करना है। अगर कोई बच्चा शुरू से बहुत कमजोर है, लागर है, बिल्कुल ही फिजिकली गोया एक लिहाज से हैंडीकैप हुआ हुआ है, उसकी सही जिस्मानी तरबियत नहीं की गई, तो फिर बाद में क्या इससे आप तवक्को करेंगे कि क्या आपके लिए कारामद जो है वो बच्चा माशरे को जो है वो के सामने पेश किया जा सकेगा। तो सारी जिंदगी भी जिसकी सही तौर पर जिस्मानी तरबियत बच्चे की ना हुई हो वो भी सारी जिंदगी एक सुस्त और काहिल की तरह से जो है माशरे के अंदर नजर आएगा। पिछली बार भी हमने ये बात बयान की थी कि बच्चे की एक मुकम्मल नींद बहुत जरूरी है। देखिए, जिसकी बहुत कम तवज्जो लोग इसके ऊपर देते हैं, बच्चे की वैसे तो उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है नींद की कुछ रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, लेकिन आम तौर पर जो बच्चा है बहुत शुरू में तो 20-20 घंटे भी सो रहा होता है वो, उसके बाद 15 घंटे और 12 घंटे और 10 घंटे की तो कम से कम बच्चे को एक लाजमी नींद चाहिए होती, वरना चले बहुत अगर हमने इसमें से कम कर दिए तो 8 घंटे की मुसलसल नींद तो जरूर चाहिए होती। ये नहीं कि मसलन रात को आपने उसको जो है वो रात के 1 बजे या 2 बजे सो रहा है वो, और उसके बाद स्कूल जाने के लिए आपने 6-7 बजे 4-5 घंटे के बाद उसे उठा दिया, अब क्या होगा, इसकी स्कूल की परफॉर्मेंस खराब होगी। अच्छा, जब स्कूल परफॉर्मेंस खराब होगी वहां पे उसको डांटे पड़ेंगी, काम नहीं करके ला रहा है या बात को सही तौर पर समझ नहीं पा रहा है, फिर वो आपके पास आएगा, रिजल्ट खराब आएगा, बाप की तरफ से भी मसलन उसको ये होगा, माँ की तरफ से भी डांट पड़ेगी, तो बच्चा एक डिप्रेशन में जाता है। उस डिप्रेशन के नतीजे में वो उसकी एक हाइपर एक्टिविटी शुरू होती है, जिसे वो कहा जाता है ना अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो हमारे डॉक्टर अलीम के अक्सर इस तरह के मजामीन होते हैं वो आपको समझाएंगे, कि वो आमतौर पर जो बहुत ज्यादा बच्चे हाइपर एक्टिव हुए और उछल कूद करते नजर आ रहे हैं, इनके अंदर एक डिप्रेशन की वजह से ऐसा हो रहा होता है। और उसमें एक बड़ी वजह यह भी होती है कि इनकी नींद पूरी नहीं हो रही। तो ये जो लाइफ स्टाइल है देर से सोने का और बच्चे की नींद पूरी ना होने का, ये मैं अपने जाती तौर पर एक बात इत्मीनान से कह सकता हूं, हो सकता है कि साहिबाने इल्म और वो सब लोग इससे पता नहीं इत्तफाक करें या ना करें, कम से कम इस लाइफ स्टाइल में जो आजकल लोगों ने अपनाया हुआ है, रात को देर से सोने का, बच्चों के लिए बहुत कम नींद, फिर अगले दिन ये मुतासिर होना और ये सब चीजें, तो कम से कम ये इमाम जमाना की फौज का सिपाही तैयार नहीं हो सकता। पता नहीं सिपाही ना तैयार होने पे आपने दुरूद पढ़ा है इमाम जमाना के नाम पे पढ़ा है, पता नहीं था मुझे। बहरहाल तो ये देखिए, खाली जबानी जमा खर्च से कि आजकल ट्रेंड हो गया, नहीं बच्चा मेरा माशाल्लाह इमाम जमाने की फौज का सिपाही बनेगा, अरे भाई नहीं बन सकता, ये आपने जो घर का माहौल बनाया हुआ है इसमें इम्कान ही नहीं है इस बात का। फौज के अंदर वही जाकर शामिल हो सकता है जो इब्तदाई फौजी ट्रेनिंग ले चुका, रोड पे कोई भी चलता हुआ आदमी, सिक्योरिटी गार्ड की कंपनी थोड़ी जो भी चलता हुआ नजर आए बुलाते हैं और कहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड भर्ती हो ना, बगैर ट्रेनिंग के भर्ती हो जाता है वो, तो चोरियां चकारियां करता है। इमाम जमाना की फौज में तो इस किस्म की बात नहीं होगी ना, तो एक पूरे ट्रेनिंग प्रोसीजर है इसको, ये इस किस्म का जो बच्चे होते हैं जिनके घर के में घर में इस तरह से उनके लिए देखिए एक माहौल तैयार करके देना पड़ता है बच्चे को जल्द सोने के लिए। घर घर में अपना लाइट्स को ऑफ करें, मसलन 10 बजे के करीब जो जिस टाइम पे भी आपको बच्चे को सुलाना है उसमें सब लोग एक मसनूई तौर पर ही क्यों ना सही, जब बच्चे सो जाए तो उसके बाद बड़े अपने एक्टिविटी किसी और कमरे में जागना है कोई काम करना है तो उस लिहाज से जो है वो जारी रख सकते हैं, लेकिन बच्चे को जल्द सुनाने के लिए ऐसा नहीं कि पूरे घर के अंदर पूरा बुकाए नूर घर बना हुआ है, टीवी भी चल रहा है और सब कुछ है, उसमें आप बच्चे को कहें जाओ जाकर सो, टीवी पे बेहतरीन प्रोग्राम और वो जो है एक्साइटेड चीजें उसकी आ रही है, उसे आप कह रहे हैं सोने के लिए चले जाओ, ये पॉसिबल नहीं। आपको घर में एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। और देखिए आप देखते नहीं कि एयरलाइन के अंदर भी अगर कोई सफर कर रहे होते हैं तो जब तक लाइटें जल रही होती हैं तब तक तो सब चाको चौबंद होते हैं, और जैसी लाइट्स ऑफ होती हैं 10 मिनट के अंदर अक्सर लोग सोते हुए आपको नजर आते हैं, एक माहौल बन जाता है। तो वालदैन को भी चाहिए कि बच्चों के साथ आकर लाइट्स ऑफ करके आकर साथ लेटें, उनको कहानियां सुनाएं, 10-15-20 मिनट में आधे घंटे के अंदर अंदर बच्चा सो जाएगा और उसके बाद फिर जो भी घरेलू काम वगैरह करने हैं वो सब किए जा सकते हैं। तो देखिए मगरबी ममालिक में इस बात पे पूरी रिसर्च हो रही है और बहुत सी जगहों पे चीज शुरू भी हो चुकी है कि बच्चों को डिनर लाजमी तौर पर 6 बजे दे देना चाहिए और उसके बाद 7 बजे तक बच्चा सो जाए और रात 7 से लेकर सुबह 7 तक वहां कहते हैं 12 घंटे की मुकम्मल नींद लेकर फिर ये स्कूल जाए, इसकी सारी परफॉर्मेंस बेहतरीन होगी, बेहतरीन तरीके से वहां पर पढ़ेगा, तो 11-12 घंटे की अच्छी खासी नींद, 10 घंटे की नींद बच्चे की इस तरह से हो तो बेहतरीन इसकी जिस्मानी तरबियत के अंदर मुआविन साबित होगी ये चीज। देखिए जिस्मानी तरबियत के एतबार से ये बात याद रखनी चाहिए कि बच्चा एनर्जी से भरपूर एक शख्सियत, इसको उछलना भी है, इसे कूदना भी है, इसे इस पर अगर आप इतनी ज्यादा इस बात की पाबंदियां लगाएंगे जो आमतौर पर घरों में देखने में आती हैं, इसको सोफे पर उछलने पर जाहिर पाबंदी होती है, इसको बेड्स के ऊपर उछलने के ऊपर पाबंदी होती है, घर में मसलन इधर से उधर वो दौड़ता हुआ जा रहा है उस वक्त उसको हर वक्त माँ की चीखों पुकार की आवाजें जो है वो कान में जा रही होती है, यहां ना जाओ वहां ना जाओ, इसके ऊपर ना चढ़ो उसके ऊपर ना चढ़ो, ये मत करो वो मत करो, तो नतीजे में क्या होता है कि इसकी जो एनर्जी है वो जिस्म के अंदर एक्यूमुलेट होती जाती, भरती चली जाती। अच्छा, जल्द ना सोने की एक वजह भी यही बनती है इस बच्चे की कि इसकी तवानाई जो उसके जिस्म के अंदर थी उसका फिजिकली कोई आउटलेट कोई चीज हो नहीं रह पा रही, जिस्म से निकल नहीं रही है, तो जैसे जैसे फिर ये रात बढ़ती चली जाती है तो ये बच्चा अगर मसलन उछल कूद जो है वो इसको ना करने को मिले तो ये क्या होगा कि रात को उसके बाद फिर देर तक जागेगा लाजमी, क्योंकि उसकी एनर्जी उसके जिस्म से निकली नहीं, जब तक वो पूरी तौर पर उसकी एनर्जी का खराज जिस्म का ना नहीं होगा तब तक वो थकेगा नहीं और बिस्तर के ऊपर नहीं जाएगा। तो बच्चा खूब उछले कूदे, और लाजमी बाप को एक बात की कोशिश करनी चाहिए, किसी भी ग्राउंड में खुली जगह के ऊपर इसका कोई ना कोई इंतजाम होना चाहिए। जाहिर है कुछ जगहों के ऊपर लिमिटेशंस होंगी, उसके लिए कोई और तरीकेकार जो है वो सोचें, लेकिन बहरहाल ये कि किसी न किसी में ये थक कर वहां से आए और उसके बाद फिर डिनर वगैरह करेगा, इसको फिर जल्दी सोने के इम्कान इसके अंदर पैदा होंगे। अगर एनर्जी इसकी जिस्म के अंदर मौजूद रही तो जैसे जैसे मैंने कहा कि रात होती जाएगी, ये मजीद एक्टिव होता जाएगा और उसके बाद फिर ये जल्दी नहीं सोएगा, और फिर एक वही साइकिल अगले दिन से फिर इसका होगा, पढ़ाई भी मुतासर होगी और बाकी सब चीजें भी। तो देखिए बच्चा जो है घर में कुछ कर नहीं पाता, ड्राइंग रूम में उसको आप जाने नहीं देती, खेल कूद उसे उस लिहाज से नहीं करने देती। अच्छा, खेल कूद के अंदर भी एक चीज और भी है कि जिस्मानी खेल कूद के साथ साथ उसको कुछ जहनी किस्म के भी खेल कूद करवाने चाहिए, लेकिन फिजिकली वो जिस्म जिस्मानी एतबार से उसे एक ऐसी स्पेस उस जगह दें कि जहां ना शीशे की चीजें ना हो। जरा आप मुझे मुझसे तो जरा मुतवज्जे रहे कि उसे जो है ना एक ऐसी जगह मिले जहां वो इजीली अपने तौर पर एक्टिविटी कर सके, सोफे पे बैठना है तो उसके ऊपर भी जाकर बैठ जाए, कुछ और एक्टिविटी करनी है वो भी कर ले। अब आपने सारी चीजें ऐसी रखी हुई है घर में कि यहाँ ये करेगा तो ये चीज टूट जाएगी, वो वहां चीज रखी है तो वो गिर जाएगी, इस तरह की चीजें बच्चों की पहुंच से हटा देनी चाहिए। और एक कमरा खास तौर पर कोई ऐसा जरूर बना देना चाहिए कि जहां पर इजीली वो अपनी तमाम जो है वो परफॉर्मेंस वो दिखा दिखा सके। अच्छा, इसी तरह से दिमागी जो खेल है, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो खेलों में भी उसको इस किस्म के खेल खिलवाएंगे जिसमें उसका कुछ दिमाग उसको लगाना पड़े, उसे कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़े, कुछ ऐसे ऐसे खेल बहुत सारे आपको खुद देख के लाने पड़ेंगे, या असेंबल और डिसअसेंबल करना है चीजों को इस किस्म का भी कोई, उसको खिलौने भी कुछ इस किस्म के लाकर देने चाहिए जिसमें उसकी तालीमी जो है वो नशोनुमा वो भी बच्चे के साथ साथ होती रहे। यानी खेलों से भी इस्तेफादा करना चाहिए कि बच्चे के जिस फिजिकली तो खेल ही रहा है वो, जिस्मानी तौर पर तो उसकी मुतासिर वो जो एनर्जी वो भी निकल रही है, लेकिन दिमाग भी उसका इस्तेमाल हो रहा है। बदनिस्बत उलमा फरमाते हैं, और आगा इब्राहिम अमीनी ने भी इस बात को लिखा है कि बच्चे को सेल से चलने वाले खिलौने कभी ना दिलवाने चाहिए, वरना ये तमाशबीन बनेगा। बस रिमोट कंट्रोल से चलने वाला, मसलन आपने जो रोबोट दिलवा दिया, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली गाड़ी दिलवा दी, रिमोट कंट्रोल से चलने वाला जो मसलन कोई और चीज उसको दिलवाई, इस किस्म के जो खिलौने हैं इनसे एतराज करना चाहिए, इसमें कोई फायदा नहीं है। और इनकी उम्र भी 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं होती बच्चे के आने के पास, वो अगले दिन बेकार पड़ा रहता है, महंगे भी आते हैं, पैसा भी बिला वजह का इनके ऊपर खर्च होता है। तो ऐसी चीजें हों कि जो कि देरपा भी हों, बच्चा हमेशा उनको दिमाग को भी अपने इस्तेमाल करे, ये तमाम चीजें बड़ी अहम है, वरना दिमागी तौर पर या जिस्मानी तौर पर कमजोर लागर और दिमागी तौर से गबी बच्चा, उसकी तरबियत भी वो गुमसुम अंदाज में जब वो आपकी बात सुनेगा तो को खातिर ख्वाह तरबियत भी नहीं हो पाएगी। तो बच्चा क्या करता है फिर, इन सेल से चलने वाले खिलौनों को देख देख कर खुश होता रहता है और एक तमाशबीन की तरह से होता है, उसकी सलाहियतें भी बेदार नहीं होती। बच्चों को चाहिए कि कुछ ना कुछ आप सख्ती वाले इसमें फिजिकल लेबर जरा हो, ऐसे खेल उसको उसमें डालना चाहिए, कुछ मुश्किलात झेलने का जिसमें वो आदी बने, कुछ जिस्मानी ताकत जो है उसको लगानी पड़े। वालिदैन आमतौर पर गलती करते हैं, गलती ये होती है कि बच्चा मसलन खुद से कोई काम जब करना चाहता है ना, मसलन वो खड़े होकर चलना चाह रहा है, नया नया चलना सीख रहा है, फौरन भागकर उसकी मदद को तैयार हो जाते हैं, जो बहुत बड़ी गलती। बच्चे को थोड़ा सा चाहे वो हल्का फुल्का सा गिर जाए बस, जहरे को ऐसी बड़ी चोट उसको ना लगे, लेकिन इस तरह से ओवर कॉन्शियस होना और बच्चे को जरा सा यानी उस मुश्किल से गुजार कर उसमें उसकी सलाहियत बेदार होती, उसको उस मुश्किलात से निकलने का वो फन और हुनर और वो चीज सीखता है। तो बाप उस अंदाज से वहां पर जरूर रहे कि कोई बड़ा कोई ऐसा नुकसान ना हो, लेकिन बच्चा कोई जिस्मानी एतबार से कुछ ना कुछ सख्तियों में उस जो ग्रूमिंग होती है, उसकी जहनी सलाहियतें बेदार होती हैं, कुछ मुश्किलात से निकलने का फन वो खुद भी सीखता है। नतीजा है कि बच्चे जो है जवान और उस हद तक चले जाते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, और उसके बाद भी वो बिल्कुल माजूर बने हुए अपने वालदेन की तरफ देख रहे होते हैं कि ये हमारी फला काम में आकर हेल्प करेंगे तो होगा, एग्जाम देने बस अब्बा छोड़ने जाएंगे और फिर अब्बा ही वहां से वापस उस बड़े 20-21 साल 25 साल के लड़के को लेने जा रहे हैं और छोड़ने जा रहे हैं, और बहुत ज्यादा यानी उसमें कोई एतमाद उस लिहाज से नहीं आ पा रहा। ये सिर्फ वालदेन की वो वाली गलती कि बचपन ही से उसको उस तौर पर एक ओवर प्रोटेक्टिव उसके लिए होना और हर चीज में आगे बढ़कर फौरन उसकी हेल्प के लिए चले जाना, उसमें उसकी सलाहियतें बन ही नहीं पाती जो कि उसके अंदर पैदा हो जानी चाहिए थी। देखिए, इस लिहाज से जब हम पैगंबर इस्लाम की सीरत का मुतालिया सिलसिले में करते हैं, कि जब पैगंबर जाते हैं और शहजादी कौनैन सलामुल्लाह अलैहा जब उनके घर पहुंचते हैं, अच्छा ये तो हुजरा है शहजादी का, और आजकल हुजरों के अंदर की भी कुछ तस्वीर जो हैं वो आई हैं। हुजरे जो है वो अंदर से कैसे हैं, बहुत सारी तस्वीर हाल ही में इंटरनेट के ऊपर भी अपलोड हुई हैं किसी एतबार से। तो पैगंबर ऐसी जगह किसी जगह अंदर तशरीफ लाएं और देखा कि शहजादी जो है वो चक्की पीस रही हैं और हसन या हुसैन में से कोई एक गोद में, और इतनी थक गई हैं। देखिए, शहनशाह कायनात की ये बेटी जिसके हाथ में तमाम कायनात की ताकतें भी, वो क्या कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इतनी मुश्किलात, इतनी तकालीफ और जिस्मानी एतबार से इतनी मुशक्कत उस घर के अंदर कर रही है, जो कि तरबियत औलाद का एक खासा है, और पुराने जमाने के जो बादशाह थे वो अपनी औलादों को इस किस्म की मुशक्कतें करवाते भी थे ताकि वो सख्त पीरियड को भी गुजारने का उनके अंदर एक हौसला पैदा हो। आजकल के बाद बहुत से बादशाह की तरह के मामलात नहीं है कि जो ना मैदान में जाकर लड़ सकते हैं और इधर उधर से बहरहाल मुतकाजी होते हैं कि उनकी मदद की जाए। तो देखा कि हसनैन में से कोई एक उनकी गोद में मौजूद है, इतनी थक गई है शहजादी कि एक हाथ चक्की पर है और एक हाथ से बच्चे को पकड़ा हुआ है और गोनोदगी के आलम में। पैगंबर इस्लाम ने जब ये कैफियत देखी तो कहा है, बेटी आखरत की सख्ती और परेशानी से बचने के लिए इस दुनिया की परेशानी और सख्ती को चखो। पैगंबर ने यानी एडवाइस की, यानी अपनी उस नौजवान बेटी के लिहाज से जिसको सहूलियात आराम हर वालिद और वालदा का आज ये होता है दिमाग में कि इसको सहूलियात और आराम ज्यादा से ज्यादा दिया जाए, लेकिन पैगंबर फरमाते हैं बेटी आखरत की सख्ती और परेशानी से बचने के लिए इस दुनिया की परेशानी और सख्ती को चखो। तो बहरहाल जितना भी बच्चा है इसमें कुछ इब्तदान कुछ सख्ती मुश्किलात के अंदर जाएगा, उसको एक तरबियती अमल उसको समझना चाहिए, हर वक्त उसको हर वक्त सिर्फ आराम और आसाइश मुहैया करने की फिक्र नहीं करनी चाहिए। इससे बच्चे के अंदर बहुत सारी सलाहियतों को आप ना दफन कर देंगे गोया। अच्छा, जो बच्चे फिजिकली ज्यादा एक्टिव नहीं होते, आहिस्ता आहिस्ता उनके ना कुछ वजन भी बढ़ना शुरू होते हैं इब्तदान। बहुत अच्छा, हमेशा ये बात याद रख लीजिए कि जो चाइल्डहुड ओबेसिटी जिसको कहा जाता है, यानी मोटापा जो बचपन से होता है, इसमें फैट जो सेल्स होते हैं इसका साइज शुरू से अगर बढ़ जाता है तो बाद में बहुत मुश्किल होती है कि ये नॉर्मल वेट के ऊपर कभी जा पाए। तो इस तरह की खुराकें या इसमें कॉन्शियस रहना चाहिए कि बहुत ज्यादा जो मोटे इस लिहाज से बच्चे हो रहे होते हैं तो इसको ये ना समझेंगे बहुत सेहतमंद बच्चा है, सेहतमंद बच्चा नहीं, ये ओबेसिटी की तरफ जा रहा है, तो इसको इसको रोकना चाहिए, उसके वजन को कंट्रोल करना चाहिए। अब मसलन बच्चा हर वक्त देख रहे हैं कि जनाब वो बैठा हुआ सिर्फ जो है ना वो लेटा हुआ सिर्फ या तो टीवी देख रहा है या मसलन खाए चला जा रहा है, वजन उसका जो है वो बढ़े चला जा रहा है, तो ये उसको कंट्रोल करना चाहिए। या मसलन वो जंक फूड जो है वो खा रहा है और उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पर बैठा हुआ या टीवी देख रहा है या रिफाइंड फूड खा रहा है, तो इन सब चीजों के नुकसानात हैं। और जितनी इसकी उस लिहाज से एक्टिविटीज की कम होती जाएगी, बैठा हुआ घंटों ये कार्टून सिर्फ देखे जा रहा है, तो जितनी फिजिकल एक्टिविटीज की कम होगी उतना ही दिमागी तौर पर कमजोर भी होगा। और कंप्यूटर से हटाना उस लिहाज से आपने देखा किसी कितना मुश्किल आजकल जो है वो बच्चों को उस लिहाज से होता जा रहा है, क्योंकि शुरू से इसमें कंट्रोल नहीं किया जा रहा और वालदैन सोचते हैं कोई बात नहीं इसके ऊपर बैठा है तो उसको बैठा रहने दो, चलो कोई और इधर उधर बाहर तो नहीं निकला हुआ है, पता चला बाहर निकलने से ज्यादा खतरनाक इस वक्त इसके लिए ये चीज हुई जा रही, जिस्मानी एतबार से भी रूहानी एतबार से भी बहुत सारी चीजें, बाहर अगर निकलेगा भी तो शायद इतना ज्यादा खराब नहीं हो सके जितना इस वक्त फुल टाइम वो कंप्यूटर के ऊपर खराब होने के इम्कान है। तो हर लिहाज से हर चीज का एक एतदाल होना चाहिए। तो रिवायतों में भी ये बात आई वसाइल शिया के अंदर बाकायदा हदीस में से है कि बच्चों को 7 साल तक खूब खेलने दो, और खासतौर पर मिट्टी के अंदर जो है वो खेलना, ये तो बाकायदा पैगंबर की एक रिवायत भी है कि इन्हें खेलने दो, मिट्टी बच्चों की चरागाह है। यानी आम तौर पर वालिदैन क्या बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि बस यार इसके कपड़े खराब ना हो जाएं और इसके ये ना हो जाए। कपड़े खराब होने तो हो जाने दीजिए उसके, तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि वो फिजिकली तौर पर और मोंटेसरी वगैरह के अंदर भी आम तौर पर इस तरह की चीजें मिट्टी में खेलने वगैरह की उनको होता है कि उनको खेलने दिया जाए। या मसलन कोई और है, ये भी अच्छी एक फिजिकल इसके अंदर एक्टिविटी होती है बनिस्बत खिलौने से, खाली जो है वो सेल से चलने वाले खिलौनों की निस्बत ही कोई भी कलरिंग वगैरह या इस तरह से कोई चीज़ ये करे तो बच्चे के अंदर शुरू से देखें खास एनर्जी होती है, उस एनर्जी को निकलना चाहिए बचपन से ही है। मुख्तलि आपने देखा कि हर वक्त उसके हाथ और जिस्म जो है बच्चे का हरकत में होता है, बल्कि कभी वो इस अंदाज से बिल्कुल प्रोफेसरों की तरह से इतना छोटा बच्चा कहीं बैठा नजर आए तो उसके अंदर शक होने लगता है कहीं बीमारी वगैरह तो नहीं हो गई इसको। तो अच्छा, इसी लिहाज से उलमा इसको भी कहते हैं कि वालदेन का बच्चों के साथ खेलना बड़ा जरूरी होता है, और खुद पैगंबर इस्लाम इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ। साथ खेला करते थे, यानी एक बहरहाल एक तरबियती अमर भी है और सीरत भी है बच्चों के साथ खेलना। अलबत्त ये बात याद रहे कि अभी हमने बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी की बच्चों की बात की थी, इतनी फिजिकल एक्टिविटी बच्चे की ना हो कि बच्चा एग्जॉस्ट हो जाए, उसका दौरानिया बहुत ज्यादा तवील नहीं होना चाहिए। मसलन उसने कहा कि वो गया हुआ जब 5 घंटे तक मसलन फुटबॉल खेले चला जाए, अब क्या बिल्कुल एग्जॉस्टेड एग्जॉस्टेड नहीं एग्जॉस्टेड नहीं बुलवाना है आपको उसको, यानी उसके जिस्म की तमानाई सारी बिल्कुल खत्म हो जाए और वो घर आकर किसी काम के काबिल ना रहे, नहीं ऐसा नहीं। एक खास आपको उसके अंदर भी अतेदाल बच्चे का जो है वो रखना चाहिए। अच्छा देखिए, खेलों से बच्चा हमेशा ना एक नज्मो जब्त सीखता है, और स्कूल की जो एक थका देने वाली एक पढ़ाई से जब वो वापस आता है तो एक तवानाई उन खेलों के जरिए वो हासिल करता है। अच्छा, बहुत सारे खेल ऐसे हैं जो इस्लामी लिहाज से तरबियत के लिहाज से बच्चे को खिलवाने चाहिए। आजकल बहुत अच्छे खेल आ गए हैं, मसलन बहुत अच्छा है कुरान चैलेंज गेम है, अगर आप ये और इस तरह की जो और चीजें भी हैं तो हम चंद एक मिसालें दे रहे हैं। आप जरा मार्केट में जाएं, निकलें, एक दूसरे से मशवरा करें, इंटरनेट पे तलाश करें, आपको बहुत सारी चीजें बच्चों के लिए वालदेन को काफी तगोदो करना पड़ती है उनको मसरूफियात देने के लिए। कुरान चैलेंज गेम है, इसके अंदर ना जाने कितने उसके अंदर सवालात, बच्चा खेल खेल के अंदर कुरान के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा है। मसलन इसी तरीके से हदीस चैलेंज गेम है, ये खुद भी डिजाइन किए जा सकते हैं। हमारे अफराद आप में से जो इस तरह की सोच रखती हूँ बाकायदा इस तरह के खेल वो बॉक्स बनाए करें, उनके लिए एक रोजगार का भी मसला लोगों के हल हो सकता है, लोगों के पास एक बड़ी वैरायटी आएगी, तालीम और तरबियत भी बच्चों का इंतजाम होगा, लेकिन लोग इसमें आगे नहीं आते, वो हमेशा उनका दिमाग कुछ मखसूस सिमतों में कारोबार के सिलसिले में चलता है। इस तरह ऐसे कारोबार भी देखने चाहिए कि जिसके अंदर तबलीग भी हो, आखरत का भी फायदा हो, दुनिया का भी फायदा हो और एक बरकत भी उसके अंदर होती। हदीस चैलेंज गेम इस तरह के कोई चीज बनाने चाहिए। और इसी तरह से मसलन और भी इस्लामिक बोर्ड गेम्स हैं, फिक्री मसाइल के गेम्स इस तरीके से जो है वो बनाए जा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिससे बच्चा इस्लामी लिहाज से भी खेल खेल में बहुत सारी चीजें सीखेगा। वो जो पैगंबर फरमाते थे ना, कितना अच्छा है कि बच्चे कमसिनी में चुस्त और तेज हों ताकि वो बड़े होकर पुरसकून और बावकार बन जाए। यानी पैगंबर ने इस बात को पसंद किया कि वो बच्चे जो वालदैन जिनसे बहुत परेशान होते हैं, ये बहुत शरारती है, बहुत उछल कूद मचाता है, ये बड़े होकर पैगंबर फरमाते हैं कि ये पुरसकून और एक बावकार शख्सियत का मालिक बनेगा, बनिस्बत उन बच्चों के जो बिल्कुल ऐसी ढीले ढाले अंदाज में या सुस्त रवि के साथ वो अपना बचपन को गुजार रहे हैं। तो देखिए, हदीसों के अंदर ये बात आई है कि बच्चे का बचपन में शरीर और चाको चौबंद होना मुस्तकबिल में उसके अकलमंद होने की निशानी, ये बाकायदा रिवायतों के अंदर ये बात आई है, तो उससे घबराना नहीं चाहिए वालिदैन को। अच्छा, दिमागी जो खेल है उसके अंदर एक बहुत अच्छा खेल मसलन उससे तालीम में मसलन स्क्रैबल, वो बहुत अच्छा है, बच्चों को इसके अंदर डालें, नए नए अल्फाज वो सीखता है, बहुत सारी चीजें उसकी इल्म के अंदर इजाफे और ब्रेन को अपने इस्तेमाल करने का उसको फन आता है। अच्छा, एक बात और जो खसूसियत के साथ वालिदैन इसकी हमेशा मुझे मुखालफत करते नजर आए वो ये है कि बच्चा जिस वक्त अपने पसंद का कोई खेल खेल रहा है उस वक्त उसे कोई काम करने को ना कहे, वो हुकुम उदूली करेगा वरना आपकी, उसकी दिलचस्पी के वक्त जिस वक्त वो बेहतरीन कोई दिलचस्पी वाला खेल खेल रहा है या मसलन क्रिकेट मसलन टीवी के ऊपर देख रहा है, कोई बहुत अहम मैच आ रहा है, उसी वक्त आप उसे कहेंगे चलो नमाज पढ़ने के लिए। अब आपने क्या किया कि इस तरह के उमूर से जिस वक्त बच्चे अपने खेलों के अंदर लगे हुए हों और उस मौके पर कोई काम करने को कहा जाए उनसे, या होमवर्क करने को कहा जाए, या मसलन नमाज ही पढ़ने को कहा जाए, उससे क्या होगा कि उस जो अपनी दिलचस्पी का काम कर रहा है, एन उस काम के दरमियान में अगर आपने उससे ये कहा तो उस काम से के लिए उसके दिल में एक नफरत पैदा होगी, उसके दिल में कराहियत पैदा होगी बच्चे की कि वो दिलचस्प, ठीक है इस मौके पर कोई बात नहीं, अगर एक वक्त वो नमाज को देर से पढ़ लेगा तो देर से पढ़ ले, कोई ऐसा जो है वो बड़ा नुकसान नहीं होने जा रहा है, लेकिन क्या होगा कम से कम वो नमाज से कराहियत और नफरत से बच जाए, वरना हर दफा आप उसे कहेंगे चलो नमाज के लिए, या तो जब भी कोई अपनी खास दिलचस्पी का काम कर रहा हो उस वक्त उसे ना टोकें, ठीक है उस काम को करने दें, आधे एक घंटे के बाद नमाज का कोई वक्त कजा हुआ जा रहा है तो चलें एक अलग मसला है, लेकिन अगर कजा नहीं हो रही है नमाज तो उस मौके पर बच्चे को नहीं टोकना चाहिए, चाहे नमाज के अंदर कुछ ताखीरी क्यों ना हो जाए, वरना एक बड़े नुकसान से बचने के लिहाज से बात की जा रही है, वरना ऐसा ना हो कि वो नमाज को एक बोझ समझने लगे, उसको कोई दिलचस्पी की चीज ना समझे और एक उसको एक कराहियत सी होने लगे कि जैसे चिड़ बन जाए उसकी नमाज, और वो गन पॉइंट पे एक लिहाज से जिस तरह से आप मजबूर होकर वालदैन के रूप में अगर पढ़ लेगा, जब उसे मौका मिलेगा वो फिर वो यही करेगा कि वो मुंह धोकर आए या नहीं आए, तो कह रहा था कि आज ही जो है मैं साबुन गीला करना भूल गया था मसलन, तो वो मुख्तलिफ तरीके ईजाद करना सीख लेगा, लड़की है वो मसलन जाएगी कमरे के अंदर और जानमाज के ऊपर अपनी चादर रखकर आ जाएगी, देखिए मैंने पढ़ ली, यानी जब भी आपको, लेकिन उस वक्त हुआ कि जब आपने उसको सख्ती और जोर जबरदस्ती करके नमाजें पढ़वाई तो जैसे ही आप सामने से हटेंगे वो डंडी मारेगी, या वो लड़का उस एतबार से नमाज के अंदर ताखीर से काम लेगा या नहीं पढ़ेगा, तो उसमें ये कोशिश ये करनी चाहिए कि एन उस मौके पर उसे कोई बात ना कहे, एक आध चंद दफा ऐसा होगा लेकिन कम से कम बच्चे के दिल से नमाज के लिए कोई बेरगबती पैदा नहीं होगी, या कोई भी और दीनी काम या पढ़ाई के लिए लिहाज से। अच्छा, अब दीनी तालीम और तरबियत के एतबार से बच्चे की, देखिए पहले तो एक बात दिमाग में रखनी चाहिए कि तालीम एक अलग चीज है और तरबियत एक अलग चीज है, जब ये तालीम और तरबियत कहा जाता है इसका मतलब है कि दोनों के अंदर फर्क है। बाज वालदैन मदरसे में, खुद हमारे अपने मदरसे में भी आते हैं और इस बात की शिकायत जो है वो करते हैं कि इतने दिन से हमारा बच्चा पढ़ रहा है उतना अच्छा नहीं बन सका है जितना इसको अब जब तक हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इसे बन जाना चाहिए था। तो देखिए एक चीज वो फरामोश कर देते हैं इस सिलसिले में कि मदरसा या मुअल्लिम का काम तालीम देना है, तरबियत देना इतना नहीं, तरबियत देना वालिदैन का काम है, तरबियत उसकी असलन घर में होती है, तरबियत असलन वो सीख के जो है वो जो काम कर रहा होता है वो है, हफ्ते में एक दिन या दो दिन दो घंटे के लिए किसी भी जगह वो जा रहा है अगर कोई चीज सीखने के लिए तो वहां पर उसको एक खास माहौल के अंदर तालीम दी जा सकती है, फकत चीजें सिखाई जा सकती हैं कि देखो ये करना है और ये नहीं करना, इसको तरबियत नहीं कहते, ये तालीम, तालीम तो तरबियत वालदैन को खुद करना है, उनको करके दिखाना है बच्चों को। देखिए वालदैन घर में तरबियत दे सकते हैं, तालीम देना मुश्किल होता है उनके लिए, बच्चे उनसे फ्री होते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, नाजो नखरे कर रहे होते हैं, तो बच्चे को वालिद अलग से बिठाकर दो घंटे को पढ़ाए ये पॉसिबल नहीं होता, और ये इतनी अहम बात है कि खुद आइमा अलैहिमुस्सलाम ने अपने बच्चों के लिए बाकायदा ट्यूटर घर के ऊपर लगवाए हुए थे, खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घर में एक तकरीब मुनक़िद हुई थी, और उस तकरीब का जो मेहमान खुसूसी थे वो अब्दुर रहमान सुलमा चीफ गेस्ट थे, उनको इमाम हुसैन के घर में जो तकरीब मुनाकिद हुई थी उसमें उनको बुलाया गया था, वो एक छोटे से मकतब में कुरान के उस्ताद थे, इमाम ने उनको 1000 दीनार दिए, बहुत बड़ी तादाद के अंदर कपड़े उनको दिए, उनका मुंह मोतियों से भर दिया और कहा कि इन्होंने मेरे बेटे को सूरह फातिहा याद करवाई है और अब ये कुरान पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पैगाम है बाकायदा कि हकीकत यह है कि घर के अंदर तालीम देना जरा मुश्किल काम है, कोई उस्ताद मुकर्रर करना चाहिए उसके लिए या मसलन उसको किसी मदरसे भेजना चाहिए, अलबत्ता इस तरह से जो इस तरह आजकल वालदेन करते हैं कि 2 घंटे को घर से बल्ला को टालना है किसी तरीके से और मदरसे भेज दिया गया है उसको, ये वाली नीयत नहीं होनी चाहिए। यानी बाकायदा एक कि घर पे हम तरबियत मुहैया कर रहे हैं, वहां से सीख के आए, फिर उसके बाद वालदेन उससे आकर पूछें, तो इस तरह से। तो देखिए, क्या इमाम खुद नहीं सिखा सकते थे? क्या इमाम सूरह फातिहा बच्चे को याद नहीं करवा सकते थे? लेकिन फिर भी उस्ताद को मुकर्रर किया। इसके मायने माना ये है कि ये लिहाज से एक बड़ा तरबियती उसूल है कि इस सिलसिले में वालदेन को इकदाम करना चाहिए। अच्छा, मेरे अपने जाती एतबार से हफ्ते में 1 या 2 दिन नाकाफी हैं, लेकिन क्या करें, अब जो स्कूलों का सिस्टम बना हुआ है, उनके टाइमिंग से सिस्टम है, बहुत सारे और मसले हो गए हैं, वरना कम से कम हफ्ते में 5 दिन बच्चा अगर मसलन घर पे कोई ट्यूटर उसको पढ़ाने के लिए, दीनी तालीम के लिए आ रहे हैं, तो कम से कम 5 दिन जो है वो अगर आते रहेंगे रोजाना 1 घंटा या 1.5 घंटा, तो एक कंटिन्यूटी भी रहेगी और वाकई बच्चा चीजें सीखता चला जाएगा। लेकिन ये 1 दिन हफ्ते में आना या हफ्ते में बमुश्किल 2 दिन आना, उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें, तो बड़ा मुश्किल हो जाती है उसके अंदर, उस एतबार से बच्चा फिर भी नहीं सीख पाता। तो वालदेन को चाहिए कि जो भी मसलन अगर कोई खातून है वो पढ़ाने के लिए आ रही है, उनको ट्यूटर के तौर पर रखा हुआ है मसलन, या मसलन कोई मर्द जो है वो आलिम दीन या कोई दीनी तालिम पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो बाकायदा उनसे मीटिंग करना वालदेन की जरूरी, क्या पढ़ाना है उसको, बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या सीख रहा है। बस ये नहीं कि उनके पास जाया, आवाज दे के भेज दिया कमरे के अंदर और उसके बाद फिर वालदेन को कोई परवाह नहीं, कभी कभार देख लिया, वो भी छुट्टियां करते रहते हैं, बच्चा भी छुट्टी कर जाता है, बस इस तरह से बस एक फॉर्मेलिटी पूरी हो रही है कि हमने एक काम किया हुआ है। नहीं, वालदेन को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और अच्छी तालीम के लिए, मैं इससे पहले भी कह चुका हूं, आपको क्वालिटी वाला टीचर रखना है, चाहे उसके लिए, अब आप देखें बच्चे के आपके कितने अखराजात होते हैं, स्कूल के कितने अखराजात वालदेन बर्दाश्त करते हैं, कितनी सहूलतें बर्दाश्त करते हैं, अलग से ट्यूशंस कितनी महंगी महंगी उसके लिए लगवाते हैं, और दीनी तालीम के लिए आपको हमेशा 500 से ऊपर वाला अगर कोई आप डिमांड करे तो जो है सबको जो है कहते नहीं ये तो बहुत महंगा हो गया भाई, इनको तो हम नहीं लगवा सकते। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें आपने देखा कि इमाम हुसैन की सीरत के अंदर क्या था, इतना ज्यादा, मैंने तो रिवायत के अंदर जो जुमला है मैंने तो उसको तब्दील भी कर दिया था कि लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, 1000 तो इमाम ने उसको दीनार जो है इनाम के अंदर दिए थे और रिवायत के अंदर 1000 कपड़े भी दिए थे, लेकिन किसी के समझ में आने वाली चीज नहीं है, हुल्ले जिसे कहा जाता है, रिवायत में तो हुल्ले का लफ्ज आया है, तो बहरहाल और मुंह मोतियों से भर दिया, फकत इसके लिए कि इमाम का एक लिहाज से पैगाम है कि अगर दीनी तालीम के लिए तुम्हें ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़े तो तुम पैसा खर्च करो, इसके लिए एक अलग से एक बजट बनाओ, उसके लिए बाप अगर दिन और रात पैसा कमाने की मशीन बना हुआ तो इस काम के लिए अलग से वो रखे। या मसलन अगर कोई शख्स नहीं भी कर पा रहा है तो वो ये भी कर सकता है कि बहुत सारे मसलन एक इलाके के अंदर कई वालदेन हो, वो आपस में सर जोड़ कर बैठे और 4-5 बच्चों के घराने मिलकर उसको कॉन्ट्रीब्यूट करके और एक अच्छा ट्यूटर रख लें, उसको अच्छी अमाउंट दें ताकि वो दिलचस्पी से आकर पढ़ाए भी। 500-1000 के अंदर जो पढ़ाने के लिए आएगा कभी वो क्वालिटी एजुकेशन भी नहीं दे सकता, और उससे इतना एक्सपेक्ट करना भी, खुद अपने लिए कर करके देखिए, कभी आपको बहुत कम किसी जगह सैलरी मिल रही हो तो वहां जाके आप बड़ा जो है वो जाफिशानी के साथ काम करें, पॉसिबल नहीं। तो ये अनमिट नकूश बच्चे की शख्सियत के ऊपर छोड़ता है जो ट्यूटर जो पढ़ाने के लिए आ रहा है, जो चीजें सिखाएगा। आज भी मुझे याद आता है कि हम लोग मैट्रिक के बाद से ही तकरीबन मेरी जिंदगी में हमारे जो उस्ताद हैं मोहतरम सादिक हसन साहब क़िबला, यहाँ पर उनके दर्स भी होते थे, तो वो आज तक मैं उसका अलग से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमें पढ़ाने वाली शख्सियत मिल गया, उसके बाद बाकायदा इनके पास पढ़ने के लिए जाने लगे। तो वाकईतन ठीक है कि जो भी कमी है और खराबी है वो हमारी अपनी तरफ से है, लेकिन उस्ताद मोहतरम की तरफ से देने में कोई कमी और खराबी नहीं हुई। तो बहरहाल उस लिहाज से दिमाग में ये चीजें रखनी चाहिए कि इसकी बहुत अहमियत है बच्चे की जिंदगी, और हो सकता है कि वो अच्छा टीचर मिल जाए इब्तदान बच्चे को तो पूरी जिंदगी उसकी एक बेहतरीन ईमान का एक नमूना बन जाए और आखरत की कामयाबी वो मुकम्मल तौर पर फकत उसे एक उस्ताद से हासिल कर ले। अच्छा, अब इसके अंदर मुंतसिर, ये तो गलत लिखा हुआ, मुस्तजद मुंतसिर, 10वें इमाम इमाम अली नकी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उस जमाने में जालिम बादशाह था मुतवक्कल अब्बासी, मुतवक्कल का बेटा था मुंतसिर। अच्छा, उस जमाने में भी देखिए ये था कि जालिम बादशाह भी अपने बच्चे के लिए दीनी तरबियत के लिहाज से कोई ना कोई ट्यूटर रखते थे। अब एक शिया मुअल्लिम, उस जमाने में तकय्ये में भी होते थे, एक शिया मुअल्लिम मुंतसिर के लिए रख दिया गया जो तकय्ये में था, उसने मुंतसिर को बिल्कुल तब्दील करके रख दिया मुतवक्कल के बेटे को, यहां तक कि बेटा अपने जालिम बाप के बिल्कुल बरखिलाफ हो गया, इसने शिया हो गया और बाकायदा उसके बाद इमाम के पास आया और कहा कि मौला कल रात को महल में एक तकरीब मुनक्किद हुई है जिसमें मेरे बाप ने अमीरुल मोमिनीन और हजरत फातिमा की शान में बहुत ज्यादा गुस्ताखियां की, अब आप बताइए कि शरई मसला क्या है। इमाम ने फरमाया शरई मसला वाज़ह है, वाजिबुल कत्ल है ऐसा शख्स जो कि अमीरुल मोमिनीन और शहजादी की शान में इस तरह की कोई गुस्ताखी करता। उसने कहा कि मौला क्या मैं अपने बाप को कत्ल कर सकता हूं। इमाम ने फरमाया देखो इजाजत तो है लेकिन तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी। देखिए जिहाद के भी जो फिक्री अहकाम है ना, जिहाद इकदामी और जिहाद दिफाई वगैरह, उसके अंदर भी बाकायदा फिक्री अहकाम है। उसके अंदर एक फिक्री हुक्म यह है कि अगर मसलन बेटा मुसलमानों के लश्कर में और बाप काफिरों के लश्कर में और बाप बेटे के सामने आ जाए, अब बेटे के लिए मकरूह है कि अपने बाप को कत्ल करे, बाप काफिर है लेकिन उसके बावजूद क्योंकि उसके उससे आसारे वजी जिसे कहते हैं वो होते हैं और लड़के की उम्र कम हो जाएगी, उस शख्स की उम्र कम हो जाएगी जो अपने काफिर बाप को कत्ल करेगा, कोई और कत्ल कर दे ये सामने से हट जाए। और तो इमाम ने फरमाया कि देखो तुम्हारी उम्र कम हो जाएगी। उसने कहा कि मौला उम्र ही सिर्फ कम होगी, इसके अलावा मुझे कोई गुनाह तो नहीं होगा। इमाम ने कहा नहीं कोई गुनाह कोई नहीं। उसने कहा फिर मुझे कोई परवाह नहीं, उम्र कम हो जाए मैं अपने बाप को खुद कत्ल करूंगा। रात के वक्त अपने साथियों और गुलामों को लेकर गया महल में और मुतवक्कल को कत्ल किया। उसके नतीजे में 6 महीने के बाद खुद अगरचे इस मुंतसिर का इंतकाल हो गया। तो देखिए मुतवक्कल उसका बाप था, मुंतसिर का देखा जाए तो विरासती किरदार इंतहाई सियाह था, सफाक तरीन बाप का बेटा, दुश्मन अहले बैत बाप का बेटा, लेकिन सही मौलिम की तरबियत ने मुंतसिर को इतना बदल के रख दिया कि उसे अपनी जान की परवाह भी ना रही। इतने ज्यादा नकुश जो है वो छोड़ता है ये उस्ताद, जिसपे मैं बार बार कहता हूं कि उसके ऊपर ख्वाह कुछ पैसा ही क्यों ना खर्च करना चाहिए, उस पर खर्च किया जाए। इसी तरीके से मुआविया इब्ने यजीद, यजीद का अपना बेटा जिसका नाम उसने अपने बाप के नाम पर रखा था मुआविया, उसको भी एक सही उस्ताद की तरबियत बचपन ही से मयसर आ गई। और यजीद के मरने के बाद जब यजीद की बीवी ने उसको, यानी उसकी मां ने उसको बुलाया और कहा कि अब तुम्हारा खिलाफत तुम्हारे लिए, तो तख्त पे इसने ठोकर मारी थी और कहा था कि ये अली इब्न हुसैन का हक है, यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का। और मेरे बाप और मेरे जो दादा थे दोनों गासिब थे, मैं इस तख्त पर बैठने को तैयार नहीं हूं। मां ने कहा कि काश तू पैदा ही ना हुआ होता। उसने कहा हां मां काश मैं पैदा ना हुआ होता, कम से कम ये मजालिम तो ना देखता। उसके बाद यजीद का बेटा पांव पटकता हुआ वहां से गया और इतना दुख था इसको इमाम हुसैन की शहादत का कि 1 साल के अंदर अंदर ये गमों से घुट घुट कर मर गया, यजीद का अपना बेटा। तो विरासती किरदार कितना सिया था, बाप यजीद, दादा हाकिम शाम, परदादा अबू सुफियान, दादी जो है वो एक लिहाज से हिंदा, यानी ऊपर तक जितने भी चले जाएं विरासती किरदार और सिया जीन्स जिसे कहा जाए वो पूरे इसके विरासती किरदार में मौजूद है। लेकिन क्या है उन सब के विरासती किरदार की तमाम सियाहियां एक उस्ताद, अच्छे उस्ताद ने इसके बदल के रख दिया इसको। इसी तरीके से बहुत तारीख में मिसालें, उलमा ने इसको खसूसियत के साथ इसमें बहुत कहा। उमर इब्ने अब्दुल अजीज 70 साल तक मौला के ऊपर जो जारी तबर्रा था और बरसरे आम मेंबरों के ऊपर गालियां दी जाती थी, अपने दौरे हुकूमत में आते ही 6 महीने के अंदर अंदर इसने सारे उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने सब जगह से मौला के ऊपर जो है वो सब शतम बंद करवा दिया। और अदलो इंसाफ का इस कदर दौर दारा हुआ कि गवर्नरों ने बाकायदा खत लिखा कि बैतुल माल हमारे भरे पड़े हैं पैसों से, कोई फकीर ही नजर नहीं आता कहां हम किसके ऊपर खर्च करें। तो उसने कहा फिर ये करो कि इन पैसों से गुलामों और कनीजों को खरीदो और उनको आजाद करो। हजारों और लाखों की तादाद में गुलाम और कनीजें खरीद कर आजाद किए गए। अच्छा, उस जमाने में देखिए ये हालत थी जब इसके हाथ में हुकूमत आई थी कि उसमें मिलता है कि एक शख्स ने एक दफा एक वीराने में नमाज पढ़ी थी और दो रकत नमाज पढ़ने के बाद अमीरुल मोमिनीन को गालियां देना नमाज के बाद भूल गया था, तो उसने कफारे के तौर पर वहीं पर एक मस्जिद बनाने का जो है वो नजर की थी कि मुझसे कैसे हुआ कि मैं अली को जो है सबको खत्म करना भूल गया, यानी दीनी फरीजा समझा जाता था, तो वो इसने खत्म करवाया। अच्छा, अब ये खुद उमर इब्ने अब्दुल अजीज फरमाते हैं कि एक दफा अकेले में, अच्छा उस जमाने में स्कूलों के अंदर भी तालीम दी जाती थी कि सारे बच्चे भी और नौजवान भी मौला अमीरुल मोमिनीन पर सब्बो शतम किया करते थे। اللهم صل على محمد وعلى محمد मौला की शख्सियत पे जाहिर है उस लिहाज से क्या, वो तो लोग अपना नामा अमाल सिया कर रहे थे, लेकिन इनके उस्ताद ने इनको बुलाया उमर इब्ने अब्दुल अजीज को और अकेले में ले गए और कहा कि ये बताओ अगर कोई शख्स अहले जन्नत में से हो और क्या उसके ऊपर उसको गालियां देना और उसको सबो शतम करना जायज होगा। कह रहे मैं सन्नाटे में आ गया, मेरे दिल के ऊपर इस बात का बहुत गहरा असर हुआ और उसके बाद उस्ताद ने इनके ऊपर रफ्ता रफ्ता काम करना शुरू किया यहां तक कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज को तब्दील कर दिया। तो किसी भी सूरत कोशिश करें कि कोई भी अच्छा ट्यूटर, कोई अच्छा आलिम दीन, कोई अच्छा दीनी तालिब इल्म उसको लगाएं, उसको कुछ ऐसे इंसेंटिव्स भी दें। हर शख्स के साथ पेट लगा हुआ है, उसके अपना घर है, रिश्तेदार हैं, उसको भी कुछ पसंदाज भी करना है, बीमारियां भी आती हैं, उसके उसका कुछ हक है कि उसको कुछ ज्यादा दिया जाए। और इमाम हुसैन की सीरत भी आपके सामने है कि किस अंदाज से वो दिया करते थे। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि आपने वाकई हकीकी तौर पर स्कूलों के ऊपर इतना खर्च किया और वहां से क्या नतीजा आजकल जो निकलता है वो सब आपके सामने। ये नहीं कि हम कह रहे कि फिर वो इसी तरफ निकल जाएं कि हम उस तालीम के बिल्कुल खिलाफ और बच्चों को जाहिल रखा जाए दुनियावी तालीम से, नहीं, लेकिन उसके वो फायदे उखरवी फायदे नहीं नजर आएंगे जो कि इसके अंदर नजर आ रहे हैं। और एक मशवरा भी है, मेरा मशवरा ये है कि अगर थोड़ा सा इंसान बच्चे को इस तरफ लगाना चाहे तो इब्तदा ही से अगर बच्चे को आलिम दीन अगर आपको बनाना है तो बचपन से उसको कुछ हौजवी उलूम शुरू करवा दें। यकीन जानी कि बच्चा ऐसे ऐसे मुश्किल मैथमेटिक्स के देखें आप क्लासेस के लेकर बैठे कितने मुश्किल आपको नजर आते हैं, बच्चे सारे सॉल्व कर रहे होते हैं। बच्चे को स्लो 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 अगर करते हुए बिल्कुल पढ़ाते हुए जाए तो बहुत उम्मीद कवि है कि वो जब तक वो इंटर वगैरह के लेवल तक बच्चा आएगा अच्छा छोटा लेवल का एक आलिम दीन जरूर बन चुकेगा। ईरान के अंदर बहुत से इसके वो हैं कि बचपन से ही जो नॉर्मल जो स्कूल के अंदर जो चीजें पढ़ाई जा रही होती हैं उसके साथ साथ या अलग से भी वालदेन कोई ट्यूशंस लगवा देते हैं जो हल स्लो तरीके से वो बच्चा हौजवी उलूम हौजवी किताबें पढ़ता हुआ जा रहा होता है, यहां तक कि जब इंटर के लेवल तक पहुंचता है तो एक संजीदा किस्म का एक छोटा मोटा आलिम दीन के लेवल तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत अहम है उस लिहाज से और लोगों को इस मुतालिक सोचना चाहिए। तो अब देखिए एक ही चीज मुमकिन है, या तो दीनी मदरसे में भेजा जाए बच्चों को, और देखिए इस कदर सवाब है इसका कि पैगंबर फरमाते हैं कि जब भी मौलिम बच्चे को सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाता है तो खुदा उस उस्ताद को, उस बच्चे को और उसके वालदेन को अजाब जहन्नुम से महफूज फरमा देता है। सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाने और हमारे छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने बच्चों को अहादीस सिखाने में तेज रफ्तारी से काम लो इससे पहले कि मर्जिया यानी गुमराह लोग गलत अकायद रासिख करने में तुमसे बाजी ले जाएं। बच्चों को बहुत जल्दी इन तमाम चीजें सिखा देनी चाहिए और जल्दी करनी चाहिए तरबियत में। आजकल हम देखते हैं गाली और मुफव्विजा और मुकस्सरीन, आजकल अगरचे ये इस्तलाहत बहुत सस्ती हो गई और हर एक के ऊपर ठोक दी जाती हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल हम हकीकी मानों में जो लोग इस अंदाज से हैं जो लोग नौजवानों को बाकायदा शिकार बना रहे हैं, और ये वही लोग हम आमतौर पर शिकार बनते देखते हैं जो किसी सही मौलिम से जिन्होंने पढ़ा हुआ ना हो, किसी मदरसे से पढ़ा हुआ ना, बड़े आराम से शिकार बन जाते हैं। और ये भी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कि कयामत के दिन खुदा वालिदैन को बच्चों को इतना बड़ा अजर देगा कि वो खुद हैरान परेशान हो जाएंगे कि इतना परवरदिगार, इतना फजल हमारे अमाल तो इस काबिल नहीं थे, इतना बड़ा मुकाम हमें कैसे मिला। तो परवरदिगार की तरफ से आवाज आएगी इस वजह से कि तुमने बच्चों को कुरान की तालीम दिलवाई थी, दीन इस्लाम की तुमने बसीरत इनको अता करवाई थी, उस पर रसूल और उनके वली की मोहब्बत उनके सीने में करार दी थी और फिक्र इस्लामी की तुमने उनको तालीम दिलवाई थी। मुस्तदरकुल वसाइल की पहली जिल्द की हदीस, इन तमाम तुमने क्योंकि इन चीजों का इंतजाम करवा दिया था इनके लिए सिखाने के लिए, तो इस वजह से इतना अजीम मुकाम आज तुमको दिया गया। तो यही वजह है कि अमीरुल मोमिनीन का ये जुमला भी बहुत मशहूर है उस लिहाज से कि अपनी औलाद की तरबियत अपने जमाने के तरीकों के मुताबिक नहीं बल्कि जदीद दौर के तकाजों के मुताबिक करो, क्योंकि तुमसे मुख्तलिफ जमाने के लिए पैदा किए गए। और इमाम हसन को भी जो वसीयत नामा इमाम ने लिखा था उसमें यही फरमाया था कि देखो कमसिन बच्चे के कमसिन बच्चे का जो दिल है वो एक खाली जमीन की मानिंद है जो हर बीज को कबूल कर लेता, लिहाजा इससे पहले कि तुम्हारा दिल सख्त होता और तुम्हारे जहन दूसरी बातों में उलझते, मैंने तुम्हें तरबियत देने में और आदाब इस्लामी सिखाने में कदम उठा लिया। देखिए ये जो तालीम देना है, खुद पैगंबर ने कहा कि मैं तालीम देने के लिए भेजा गया हूं। उस्ताद का काम देखिए फकत पढ़ाना नहीं है बल्कि शौक इल्म बेदार करना। जब भी हम कह रहे हैं कि बेहतरीन उस्ताद रखने की कोशिश करें, देखिए उस्ताद के अंदर अगर खुलूस और मोहब्बत की चाशनी हो तो ये बात भगोड़े बच्चों को भी छुट्टी के दिन सबक पढ़ाने पर आमादा कर सकती है। यानी अब उस लिहाज से देखा जाए कि अच्छा वाकई अच्छा उस्ताद हो और शौक आपके अंदर जो वो पैदा करे, तो अभी आपको क्या बताया कि हिकायत कि जो कि भगोड़े बच्चों को भी छुट्टी के दिन सबक पढ़ने पर आमादा कर सकती है। अब आप भी आज छुट्टी के दिन ही आएंगे, खैर मैं तो नहीं कहूंगा कि आप भगोड़े बच्चियां हैं, लेकिन बहरहाल ये कि अगर उस्ताद के अंदर वाकई शौक पैदा करने की एक सलाहियत हो, जैसे कि आपके उस्ताद मोहतरम बिरादर वसीमाम आपके अंदर कितना शौक और कितनी ताकत अपने लगाते हैं, किसी तरह से शौक आपके अंदर मुंतकिल हो जाए, तो अच्छा उस्ताद इसकी बड़ी अहमियत हर जगह रहेगी। तो अब देखिए ये जो मौलिम और उस चाहे घर पर आकर पढ़ाए आपको बच्चों को, या मसलन आप किसी मदरसे के अंदर जो है वो भेजें, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं, इन दो में से एक ऑप्शन कम से कम जो है वो हासिल करना, क्योंकि यही बच्चियां जो है वो जहन्नुम की आग से वालदेन को बचाने वाली हैं। और बच्चा वहां आकर मदरसे के अंदर बहुत सारी चीजें सीखता है। बाकायदा खुद एक वालिद ने मुझे एक बच्चे की बात बताई, और वैसे अलग अलग से भी कहते हैं कि भाई अब तो मुझे नमाज पढ़ना घर में मुश्किल हो गया है, 20-20 गलतियां मेरी एक एक नमाज के अंदर निकाल के मुझे दिखाता है। किसी जगह नमाज जमात पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पर बहुत सारे लोग जो नमाज जमात के अंदर आए होते हैं उनकी सबकी गलतियां नोट कर रहा होता, क्योंकि चीजें सीख ली हैं उसने। ये एक अप्रिशिएट करने वाली बात है, और ये चीजें या तो वो मौलिम सिखाता है घर पे आकर या ये मदरसा सिखाता, और ये तमाम चीजें यानी इसके अलावा कोई और तरीकेकार नहीं है। छोटी उम्र में बच्चों को इस लिहाज से काबू कर लेना चाहिए कि वो इस तरफ रागिब हो जाए। देखिए अब मैंने कहा ना कि दो चीजें मुमकिन है, या तो सिर्फ वालदेन को चाहिए या तो ट्यूटर लगवाएं या मदरसे में भेजें, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। और इन दोनों में से अगर एक काम भी नहीं किया वालदेन ने, तो ऐसी औलाद से आप कोई उम्मीद ना रखें कि आपके मरने के बाद आपके लिए करेगी। बहुत हुआ तो मैंने ज्यादा से ज्यादा 1, 2, 3, 4, 5 साल तक सिर्फ एक सालाना मजलिस तरहीम मुनक्किद करते देखा है, छठे साल से वो भी खत्म होती चली जाती। कोई उम्मीद ना रखें सिवाय कि वहां पर कब्र पे आकर, जाहिर है कि वो आकर बायोलॉजी केमिस्ट्री और ये सब चीजें तो जो नहीं पड़ेगा पढ़नी, तो वही चीजें जो आखिरत में फायदा पहुंचाने वाली उस लिहाज से हैं। तो ये दूसरे जो बच्चे हैं जिनकी ऐसी तरबियत नहीं हुई ये कभी आपके लिए वो चीज नहीं करेंगे, उनके फिक्र ये कभी पैदा नहीं होगी। सालाना मजलिस से ज्यादा कुछ भी नहीं हो पाएगा, ये वो सच है कि जो कि कड़वा लग रहा है लेकिन है, बहरहाल बात सच है मगर बात है रुसवाई की, जो शेर भी है ना वो इसी मुतालिक ही। तो बहरहाल अच्छा देखिए जो तरबियत नाबालिग जब हो, जब बच्चा करीबल बुलूग होता है, जब बालिग होने के बिल्कुल करीब आ जाता है बच्चा, उस वक्त उस तरबियत के समरावर होने का वक्त करीब आ रहा होता है। इस पौधे या दरख्त के समरावर होने की माली को जो लज्जत है वो अभी उठानी बाकी होती है। जैसे कि हमने पिछली मरतबा भी बताया था कि साढ़े 97 दिन पहले कमरी लिहाज से लड़कियां बालिग हो जाती हैं, लड़के 16 साल के पहले दिन बालिग हो जाते हैं उम्र के एतबार से। तो ईरान और इराक के अंदर बाकायदा बुलूग से चंद माह पहले से एक तकरीब की तैयारी शुरू हो जाती है जिसे यहां पर भी राइज करना चाहिए, उसका नाम ही है जश्न तकलीफ इलाही। इसको जश्न अबूदियत भी कहते हैं, जश्न इबादत भी कहते हैं, जश्न बुलूग भी कहते हैं। यानी बच्चा जिस वक्त बालिग होने से 6 महीना पहले, लड़की बालिग होने से 6 महीना पहले बाकायदा उस, देखिए अब सालगिरहों के अंदर फजूल किस्म की सालगिरह, इस पर हमारी कभी बात होगी, इसमें कितना वक्त पैसा और सब कुछ ऐसे जाया हो रहा होता है एक लिहाज से, उससे कहीं ज्यादा अहम चीज ये है जश्न तकलीफ, जश्न तकलीफ इलाही। तकलीफ कहते हैं नहीं, फरीजा परवरदिगार की तरफ से अब इस बच्चे के ऊपर आयद हो रहा। तो इसका बच्चे की तरबियत पे बेहतरीन असर होता है, बच्चे का दिमाग बनाना शुरू कर, देखो अब तुम बालिग होने वाले हो, अब देखो तुम बालिग होने वाली हो, इस दिन खुदा तुम पर जो है खसूसी इनायत करेगा, तुम पर अपनी इबादत और फराइज और वाजिबात का बोझ डालेगा और तुम पर जो है तुम्हें इस काबिल समझेगा, उसके बाद तुम खुद मुख्तार हो जाओगी, तुम्हारी बात पर एतबार किया जाएगा, तुम्हारी गवाही कबूल की जाएगी। जिस तरीके से देखिए बच्चे को जैसे जैसे उसके शनाख्ती कार्ड बनने के दिन करीब आ रहे होते हैं, बच्चा कितना खुश हो रहा होता है, अच्छा अब मेरा जाती शनाख्ती कार्ड बन जाएगा, अच्छा बच्चे का पासपोर्ट बनता है, बच्चा कितना खुश होता है। इसी तरीके से बच्चे के दिमाग में ये वाली खुशी, इसकी पहले से बच्चे को तैयारी करानी चाहिए, उसको मसलन गुसल का तरीका बताना चाहिए और लड़की हैं उनको खसूसी मसाइल की तरबियत उस सिलसिले में पहले से दे देनी चाहिए ताकि वक्त आने पर उनकी कोई इबादत वगैरह भी बातिल ना हो। तो और बाकायदा फिर उस तकरीब को बहुत जोश खरोश के साथ मनाएं, इसको कहा जाता है जश्न तकलीफ इलाही। जब 9 साल की बच्ची हो जाती है उस मौके पर ये तकरीब चाहे तो घर के अंदर जो है वो मुनक़िद करें, वहां तो बहुत पुरशिको अंदाज में होती है और बाकायदा केक वगैरह, उसका नाम ही जश्न तकलीफ केक वगैरह होता है और उसको जश्न इबादत जो है वो भी करार दिया जा रहा होता है और उसके भी अलग केक इस नाम से बन रहे होते हैं। लड़के जो हैं वो 16वें साल के पहले दिन बालिग होते हैं तो जश्न इबादत के नाम से बाकायदा हम कितने उन तकारीब के अंदर बड़े बड़े उलमा जो है वो शरीक होते हैं, आयतुल्ला नूर मुफीदी बाकायदा इस तकरीब के अंदर जहाँ तमाम बच्चियों का बाकायदा शहर के अंदर यानी बाकायदा एक तकरीब मुनक़िद की जाती है कि जो बालिग होने वाली लड़की हैं उनके लिए उसमें, और फिर वहाँ नमाज जमात जो है इतनी बड़ी तादाद में सब वहाँ पर कायम होती है और जहां जहां ये चीजें हो रही हैं देखिए सब चीजें बच्चे के ऊपर एक ऐसे अनमिट नकूश, सारी जिंदगी बच्चा किसी जगह घूमने जाता है सारी जिंदगी उसका आप तस्करा करते हैं, वहां गए थे तो ये हुआ था, ये उसकी दीनी तरबियत के अंदर बेहतरीन किरदार अदा करती हैं सब चीजें। और बाकायदा उसके बाद कोई आलिम दीन हो कुछ उस सिलसिले में खास उनको इंस्ट्रक्शंस या तकरीर वगैरह भी करना चाहे, तो इतनी अहम चीज है कि सबसे पहले जिसने इस जश्न का इनेकाद किया था तारीख के अंदर वो सैयद इब्ने ताउस ने अपने बेटे के बुलूग के सिलसिले में इस इकदाम को किया था, आज से तकरीबन 600 साल पहले के सैयद इब्ने ताउस हैं। आयतुल्ला इब्राहिम अमीनी फरमाते हैं कि इन्होंने अपनी किताब कशफुल मुहज्जा इसमें बाकायदा, जिसका जो फारसी तर्जुमा बरनामा सआदत के नाम से हो चुका है, इसमें अपनी एक आरजू लिखी थी कि अगर मैं अपने बेटे के बुलूग के दिन तक जिंदा रहा तो मैं उस दिन को ईद के दिन के तौर पर मनाऊंगा, और उसके बाद 150 दीनार सदका देने का भी उन्होंने कहा था। और फिर जब उनके बेटे जिनका नाम मोहम्मद था जब वो सन बलूग को पहुंचे तो बाकायदा एक तकरीब मुनक़िद हुई, और उस लिहाज से भी इनके एक इंस्ट्रक्शन है बाकायदा कि इस दिन चाहिए बाप को और उनकी औलाद को जो भी उस दिन बालिग हुआ है ये दोनों सजदे शुक्र जो है वो अंजाम दें उस नेमत बुजुर्ग के मिलने पर जो परवरदिगार ने इनके ऊपर आज डाली। और कह रहे बाप पर भी दो फरिश्ते अलग से मुवक्किल किए जाते हैं और निगेबान मुकर्रर किया जाता है और ये उनकी फिर हिफाजत भी करते हैं फरिश्ते, इनको चाहिए कि बाप और बेटा ये इन फरिश्तों को बाकायदा सलाम करें और दो फरिश्ते बेटे पर अलग से भी इन दो फरिश्तों से अलग भी मुकर्रर किए जाते हैं जो आमतौर पर कांधों के ऊपर जो है वो आते हैं, तो उनको सलाम करना चाहिए इस दिन। और बाकायदा बच्चे को सआदत और कामयाबी से हमकिनार करने के लिए उस दिन खास तौर पर बाप जो है वो दुआ करे, बच्चे को शर्र शैतान से बचने की दुआ उस दिन मांगी जाए और दोनों सजदे शुक्र अदा करें और 2 रकत नमाज शुक्राना जो है उस दिन खास तौर पर अंजाम दें। तो और उसको इस लिहाज से जश्न इबादत जब इस जश्न को जो है वो कहा जाता। आयतुल्ला इब्राहिम अमीनी ने भी बहुत ज्यादा इसकी सिफारिश की है कि चीजें जो के लिहाज से राइज होनी चाहिए, तरबियती उमूर में बहुत माविन है, इनको बाकायदा राइज होने करने की जरूरत। अच्छा, फराइज और वाजिबात के कामों के सिलसिले में भी कि बच्चे की इसमें कोई मुश्किलात ना पेश आए अपने फराइज और वाजिबात के सिलसिले में। आज कितने लोग हैं बैरून मुल्क गए हैं, वहां से कितने हमें वहां से ईमेल कर रहे होते हैं, उलमा से भी हमने पूछते देखे हैं कि ऐसी जॉब मिली है, सुअर बेचना पड़ रहा है, शराब बेचनी पड़ रही है, फला चीज है, जॉब्स के बेताशा मुश्किलें हैं, नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, वजू नहीं कर सकते हैं, यानी फराइज और वाजिबात के अंदर मुश्किलात है। इसके लिए अलग से दुआ करनी चाहिए कि अहकामात इलाही के ऊपर अमल में कोई रुकावट पेश ना आए, और वो कहते हैं खास तौर पर इस दिन जो है वो जरूर इसकी दुआ मांगनी चाहिए। और इस तकरीब में से 5-6 महीने पहले ही बच्चे को बाकायदा इसके ईरान में तो बाकायदा इसकी पूरी पूरी किताबें हैं उस जश्न तकलीफ के लिहाज से क्या अहकाम अब इस बच्चे के ऊपर है, कौन कौन सी चीजें इसको सिखा देनी चाहिए। बच्चे को मसलन मुख्तसर अकायदे हक्का जो है उससे पहले पहले सिखा दें, उसको तकलीद के अहम मसले सिखा दें, अहम फिकही मसाइल, लड़की है तो हिजाब वाले मसले और लड़का है तो दाढ़ी वगैरह रखने का मसला, अहम गुनाहों की इसको मजम्मत जो है वो इसको बताएं, अहम मुस्तहबात इसको उससे पहले सिखा दें, गुनाह ने कबीरा कौन कौन से हैं वो सब इसको बता देने चाहिए, तौबा गुनाहों की कैसे की जाती है वो इसको बतानी चाहिए, वजू कैसे किया जाए, गुसल कैसे किया जाए, तयम्मुम कैसे किया जाए, नमाज और रोजा के जो अहम मसले हैं वो, होम्स के अहम मसले वगैरह, यानी इस तरह की तमाम चीजें जो इससे पहले बुलूग से पहले मुख्तसर तौर पर इसको सब आगाह हो जाए। बाकायदा इस पर किताबें तक हैं लेकिन उर्दू में तो खैर कोई किताब अवेलेबल नहीं है। तो इब्ने ताउस कहते थे कि इस दिन को बाकायदा रोजे ईद की तरह से मनाएं। अच्छा, मदारिस के अंदर भी अलग से, शायद कि हमारे मदरसे में भी होता है, कुछ क्लासेस की रखी जाती हैं जो बच्चे बुलूग से करीब होते हैं तो उनको कुछ अहम मसाइल सिखाने के लिए अलग से क्लास भी मुनक्किद की, लेकिन अलग से भी दीनी मदारिस में एक सिलसिला होना चाहिए। एक बहुत यादगार तरीन दिन है बच्चे के लिए, और बच्चा जो है इसको बहुत, जिस तरह सालगिरह मनाई जाती है ना, बच्चा कितना खुश होता है उस दिन, उसको गिफ्ट्स मिलते हैं, तो सारी जिंदगी के लिए उसका एक अनमिट जिस तरह नकोश जो है उसके दिमाग पर इन तमाम तकरीबात और उसके रहेंगे, और जो कि दीनी तरबियत के लिहाज से इसकी बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा। और बाकायदा आइमा के हरम में या जो और हैं शाह अब्दुल अजीम वगैरह के हरम में बाकायदा इस तरह के जो बच्चे होते हैं जो करीबल बलूग, उनकी बाकायदा जश्न तकलीफ वाले रोज वहां पर भी उनकी क्लास मुनक्किद की जाती उस बाबरकत जगह के ऊपर। तो देखिए, बच्चा जो है वो एक लिहाज से मुकल्लिद है, आप उसके मर्जे तकलीद हैं। जैसे जैसे जो जो चीजें वो बच्चा आपको करते हुए देखेगा बिल्कुल वैसे ही वो करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल वैसे ही करने की कोशिश करेगा। बच्चियां हैं, आप देखें बच्चा सिर्फ नकल उतार रहा होता है, और ये बहुत अहम चीज है कि वालदैन जो करेंगे वो बच्चा वैसे ही करने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि पैगंबर की अपनी सीरत में पैगंबर की वो हदीस क्यों है कि सल्लु कमा राय तुम उन्नी उसल्ली, जिस तरह मैं नमाज पढ़ता हूं उस तरह, जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते देखो वैसी नमाज पढ़ो। पैगंबर ये भी फरमा सकते थे कि जबानी बता देते, देखो पहली रकत में ये पढ़ना है, दूसरी में करना है, फिर रुकू करना है, सीधा करना है, तशहुद सलाम है, लेकिन नहीं, करके दिखाया। इसी तरीके से इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो वो आप सुनती हैं गालिबन आपने उस पर तवज्जो नहीं दी, वो जो सहाबी ने गलत वजू किया था तो इमाम हसन और इमाम हुसैन ने वजू करके दिखाया था। ये भी तो कर सकते थे कि बराह रास्त गलती बता देते, नहीं, करके दिखाना एक अलग से एक चीज है। जिस तरीके से ये भी रिवायत में कि पैगंबर इस्लाम यानी फिजिकल तौर पर करके कुछ चीज को दिखाते थे, मसलन पैगंबर ने एक दफा अपने एक हाथ में सोने को उठाया और एक हाथ में रेशम को लिया, खालिस रेशम को, और कहा कि ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों के लिए हराम है। क्यों या रसूल अल्लाह, आप ये नहीं कर सकते थे कि आप जबानी बताते, सबने सोना भी देखा हुआ था, रेशम भी सबको पता है, सिर्फ जबानी भी बताना काफी था, लेकिन नहीं, अमल करके हाथों में उठाकर इस लिहाज से उसको दिखाया। क्योंकि बहरहाल पैगंबर इस्लाम उम्मत के बाप हैं, और एक बाप जिस तरह से भी कोशिश करता है किसी तरीके से बच्चे को अनमिट नकोश उसके दिमाग पे हो जाए उस तरबियत के। अच्छा, अब बच्चा जो है देखिए उसकी जहनी तरबियत भी करना है, बस इसको 5 मिनट के अंदर, क्योंकि फौरन बाद बिरादर वसीम आम का दर्श होना है, इसके बाद तो बस 5 मिनट और लेते हैं। जहनी तरबियत बच्चे की, देखिए बच्चे की जहनी तरबियत में इस बात याद रख लेंगे, कुव्वत फैसला जो है ये बच्चे की आपको लाजमी मजबूत करवानी, मसलन बच्चे को अगर आप खरीदारी के लिए किसी जगह साथ ले जा रहे हैं तो उससे उसकी पसंद नापसंद पूछें और बच्चा खुद चूज करे कोई भी चीज अगर खरीदारी करने की। मसलन उसने कोई ऐसी कमीज या कोई ऐसा कपड़ा चूज किया, उसने मुंतखब किया अपने लिए, क्या आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं, अरे देखो ये गाउदी ये क्या उठा के ले आया है चीज, इस किस्म की बात कर रहे हैं, उससे बच्चे का दिल टूट जाता। बच्चा हो या नौजवान हो इस बात को बहुत माइंड करते हैं कि उसकी लाई हुई या पसंद की हुई चीज को इस तरह से रिजेक्ट किया जाए। उससे इंतखाब करवाएं, जो भी उस पर पैसा खर्च हो, ज्यादा से ज्यादा उसने गलत इंतखाब भी अगर किया तो 500 खर्च हो जाएंगे, 1000 खर्च हो जाएंगे, 2000 का नुकसान हो जाएगा, मगर बच्चे की कुव्वत फैसला 2000 रुपए में मजबूत आपने करवा दी, जो कि कोई ऐसा नुकसान का सौदा भी नहीं। गलती तो होती है हर शख्स से, गलती भी करते देखें तो आप कहेंगे मसलन उल्टे सीधे उसको अल्फाज कहे जाए, इस पेंडू को देखो कि मसलन इसने मसलन क्या ये कर दिया है, इसको सौदा लाने की तमीज नहीं। तो इस तरह की चीजें, अच्छा मसलन अगर वो सवाल कोई करे तो मुकम्मल तवज्जो के साथ उसका सवाल सुनना और उसको जवाब देना चाहिए, तशफी करनी चाहिए, उसकी तारीफ करनी चाहिए, हाँ वाकई तुमने बहुत अच्छा सवाल किया, आपको जवाब आता हो तो आप दे दें, नहीं जवाब आता तो किसी से पूछें, किसी आलिम से पूछें, चलो आओ फोन करते हैं, चलो आओ ये करते हैं पूछते हैं, लेकिन उसको बाकायदा एंटरटेन करें बच्चे को, ऐसा ना हो कि उसको बिल्कुल धुतकार दें, सवाल सलाम के जाओ किसी से जाके पूछ लो, मेरा दिमाग मत खाओ, इस तरह करके भगा दिया, तो वो इससे कभी भी बच्चे के अंदर वो सलाहियत बेदार नहीं होगी। तो मुकम्मल तवज्जो के साथ, अच्छा बच्चे की जो कामयाबियां हैं उसको भी आप डिस्कस करना चाहिए बच्चे से कि देखो तुमने जो कामयाबी हासिल की है ना ये इस वजह से की है, तुमने इस दफा टीवी कम देखा है, या मसलन तुमने खेल बहुत ज्यादा तुम टाइम पे खेलते थे, इस दफा तुमने खेल कम खेले हैं, दौरानियां कम रखा है, इस वजह से तुम्हें कामयाबी मिली, तो बच्चे के दिमाग में बात आएगी अच्छा हाँ ये हो सकता है। या मसलन बच्चा अगर उसके नाकामी किसी चीज में हुई है तो उसको भी डिस्कस करें, देखो ये इस वजह से जो तुम्हें नाकामी हुई है, तुमने खेला बहुत, तुम टीवी बहुत देखते रहे, तुम बाहर बहुत ज्यादा निकल रहे थे, फला कोई चीज, उसको बाकायदा समझाएं कि तुम्हारी नाकामी की वजह ये, इससे बच्चे की देखिए जहनी तरबियत होती। एक नौजवान ने कहा बाकायदा ये चीज बताई कि एक दफा अब्बा ने जो है ना, समझदार अब्बा थे, उन्होंने टास्क दिया उसे कि देखो दिन में जो भी तुम काम करो ना, मैं आज तुम्हें काम दे रहा हूं, तुम उसे लिखो, तुम कहां गए, स्कूल गए या कॉलेज गए, कॉलेज से तुम वापस, फिर उसके बाद कहां गए, किससे मिले, फिर घर कितने बजे आए, खाना खाया, उसके बाद क्या किया, या रात तक की सारा रूदात एक दो दिन बच्चे ने लड़के ने लिखा, और उसके बाद फिर उसने कहा कि वालिदे गिरामी आपको जो समझाना है वो मुझे वैसे ही बता दें, ये तो मैं नहीं कर सकता, नामुमकिन है मेरे लिए पूरे दिन की इस तरह की रूदात लिखना। कहा कि बेटा यही मैं तुमको समझाना चाह रहा था कि जब तुम अपने इस कमजोर बाप के सामने एक दिन का हिसाब नहीं दे सकते तो खुदा के सामने कयामत में सारी जिंदगी का हिसाब कैसे दोगे। बस कह रहे हैं उस नौजवान ने कहा कि वाकई अब्बा ने इस तरीके से मुझे वो चीज समझाई कि आज तक जब भी कोई काम करने जाता हूं यही दिमाग में आता है कि खुदा को क्या जवाब दूंगा। बाप ने इसी तरीके से कहा कि देखो बेटा फुला दोस्त मुझे लग रहा है कि तुम्हारा अच्छा नहीं है और ये तुम्हें बुरी बातें मसलन सिखा रहा है, तो और देखिए बुरा दोस्त जो है वो जाहिर है कि बुरे कामों के अंदर मदद करता है, कभी कयामत के दिन कहा जाएगा कि काश मैं फुला को अपना दोस्त ना बनाया होता। वालिद ने कहा कि देखो मुझे लग रहा है कि ये तुम्हारा दोस्त सही नहीं, इसको इससे तुम पीछे छुड़ाओ। तो नौजवान ने कहा कि बाबा यानी मैं खुद तो मजबूत हूं, मुझे उसके बुरा होने से क्या फर्क पड़ता है, मैं ठीक हूं, मैं उसकी बुराई में नहीं आऊंगा। तो कह रहे वालिद साहब ने कहा एक दफा ना सेब की पेटी ले आए और सारे सेब मुझे दिखाए कि देखो सारे बिल्कुल तरोताजा है और सिर्फ एक सड़ा हुआ सेब उस पेटी के अंदर रख दिया, और चंद दिन बाद फिर मुझे दोबारा बुलाया और कहा अब पेटी को खोल के देखा तो उसमें अक्सर जो है वो सड़े हुए सेब या मौसमी की वजह से सारे वो पूरे तमाम के तमाम फल खराब हो गए थे। कहा कि बेटा इसी वजह से मैं कहता हूं कि एक भी अगर दोस्त तुम्हारा खराब है तो तुम सारे अच्छे दोस्तों तक वो अपनी खराबी को पहुंचा देगा। कह रहे मेरे दिमाग में बात नक्श हो गई। यानी ऐसे ऐसे तरीक़ेकार से बच्चों को समझाते हुए जाना, ये वालिदैन की हमेशा सारी जिंदगी, चाहे बच्चे जो है शादीशुदा भी हो जाए, उनके बच्चों के भी बच्चे हो जाए, तब भी उनको चीजों के अंदर इसी अंदाज से समझाने की जिम्मेदारी रहेगी। इसी तरह से ये तमाम दोस्त जो हैं वो असलन दोस्त हैं लेकिन पीछे से ऐसा है जैसे छुरा घोंप रहे हों और आखरत तबाह करके रख देते हैं अगर किसी खराब दोस्त हो जाए। अच्छा बच्चे की जहनी तरबियत के लिहाज से देखिए, मेहमान कोई घर के अंदर आते हैं, बच्चे से उसका मुकम्मल तारुफ कराएं, उसके बारे में जो है वो बताएं और मेहमान के सामने बच्चे की जो है ना वो तारीफ करें, कहाँ पढ़ता है, उसके कोई अचीवमेंट है वो मेहमान को बताएं, तो बच्चा बहुत अपने आप को उसके अंदर एक पैदा होती है हौसला अफजाई। और मसलन अगर आमतौर पे हम देखते हैं कि बच्चा मेहमान के सामने अगर आ जाता है तो बाप कहते चलो भागो यहां से, अभी मैं बात कर रहा हूं, उसको भगा देते हैं। तो बच्चे की बहुत सारी चीजें, बच्चा उस वक्त तो चला जाता है लेकिन नफसियाती तौर पर उसे बहुत बुरा लग रहा होता है। देखिए, बच्चे के एहतराम अलग से इसको देना चाहिए। बच्चे के एहतराम के अंदर बहुत कमी आजकल जो है वाकई हो रही है। उनको बुरा भला, कौन कौन से अल्फाज, जो इंशाल्लाह अगली जो हमारी नशिस्त होगी उनको बागी बनाने के अंदर बहुत ज्यादा हाथ इस किस्म के अल्फाज कहने का भी। बच्चा कितनी बहुत सारी चीजें ऐसी उसके एहतराम में कमी हो, बेइज्जती महसूस करता है। मसलन किसी घर में तकरीब हो और वालदेन से, वालिद से मसलन सब लोग हाथ मिला रहे हैं, उससे हाथ ना मिलाएं, बच्चा बहुत माइंड करता है। उसके मुकाबले में जब उससे हाथ मिलाया जाता है तो बहुत खुश महसूस करता है अपने आप को, बहुत अपने आप को अहम महसूस करता है कि उसको नजरअंदाज नहीं किया गया। आमतौर पर हम देखते हैं कि मसलन बच्चा किसी जगह जाता है, बाप को कुर्सी पेश की जाती है, बच्चा बस ऐसे ही इधर उधर होता है या बाप की गोद में सर रख लेता है। उसके बच्चा अंदर से अपनी एक जिल्लत महसूस करता है। इसके अंदर सबको प्लेटें दी जा रही होती हैं खाने की, बच्चा जो है बाप की प्लेट में खा रहा होता है, बच्चे के लिए अलग से एक प्लेट का उसका इंतजाम होना बचपन से ही, यानी उसके बहुत उसके अंदर एक अलग से उसकी दिमागी तरबियत और उसके जो एहसास है उसका अपनी इज्जत नफ्स का, उसको बहुत ज्यादा कवी होता है। उसके मुकाबले में वो अपनी इज्जत नफ्स के अंदर कमी महसूस करता है अगर उसको स्पेशल कोई मुकाम इस लिहाज से ना दिया जाए। उसे अगर चीख चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर तो वो उसकी दिल का हशर कहा जाता है कि इस तरह का होता है। इस तरह तेज आंधी से जमीन पर जो लगी हुई कोंपल है उसका जो हशर होता है इस वक्त उसके दिल पर, इस तरह से उसका नन्ना सा दिल जो चीखो पुकार जो बाप या माँ उसके ऊपर कर रही होती है वो उसके ऊपर जो उसका असर हो रहा होता है। बच्चा शुरू से अपने वालदेन को जो भी चीख पुकार कर रहा था उनको जालिम समझने लगता। उस लिहाज से एक दफा पहले भी मैंने इसका जिक्र किया था कि बच्चों को खासतौर पर डरावनी कहानियां बिल्कुल ना सुनवाएं और ना उनको कोई डरावनी फिल्म देखने दें। मैंने इस वजह से ये लगाई कि आप लोगों को देख के इस पर इतना असर हो रहा है तो उस बच्चे की नफसियात पे क्या असर होगा जो बिल्कुल अभी छोटा नन्ना नाबालिग बच्चा है, वो कितना इन चीजों का असर कबूल करेगा इन खतरनाक शक्लों। तो इसी तरीके से अच्छे अल्फाज हमेशा उसको कहे जाएं। आप देखती नहीं कि हजरत इब्राहिम का अगर आप वाकया कुरान के अंदर पढ़ें कि आजर अगरचे सगे बाप भी नहीं थे, चचा थे, लेकिन इज्जत और एहतराम में जगह जगह कुरान में उनको या अबते या अबते या अबते बार बार कह के जो है मुखातिब, ए मेरे वालिद गिरामी, ए मेरे बाप, इस तरह से बार बार, यानी अल्फाज ऐसे हैं। और हदीस किस्सा के अंदर भी वालेकसलाम या कुर्रता आइनी व तमारता फवादी, कितनी दफा आप पढ़ती, ए मेरी आंखों की ठंडा, ए मेरे मेवा दिल, इस तरह के अल्फाज आजकल लोग कहना भूल गए हैं घरों के अंदर बच्चों को। और वो जो नाम लेते हैं उल्टे सीधे, वो तो मैंने पेश किए थे आपको कि किस किस तरह के जो उनके नाम रख दिए जाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। और बच्चे की इज्जत नफ्स के लिए एक और भी, कभी भी कोई बच्चे की चीज इस्तेमाल करनी हो तो बच्चे से हमेशा इजाजत लेनी चाहिए। वो बहुत अच्छा फील करता है अगर उसकी चीज इस्तेमाल करनी की उससे इजाजत ली जाए। और बुरे दोस्तों की सोबत से जाहिर है उसको आपने अभी से पहले कहा कि लाजमी तौर पर बचाना है। आयतुल्ला मजाहिरी कहते हैं कि इतना ज्यादा जरूरी है इस बात के लिए कि मैं ऐसे नौजवानों से वाकिफ हूं कि जिनकी बगल में हर वक्त मफातीउल जिनान रहती थी और वो कभी हरम मासूम कुम जाना तर्क नहीं करते थे। बुरे दोस्तों की सोबत में आज वही नौजवान मुझे दाढ़ी मूंडे हुए फिरते हुए नजर आते। तो इसके लिए जरूरी है वालदेन को कि वो मोमिनीन, जो साले मोमिनीन है, इनके घरों में रब जब्त अपना बढ़ाएं। वहां जाना फासिकों को, फासे लोगों के घर बार बार जाना होता है, इससे बजाय साले मोमिनीन घरानों के अंदर जाएं। लोग आजकल ऐसे अफराद से जो बहुत वहशत भी महसूस करते हैं कि अच्छा उनके घर जाएं, वहां तो बहुत ज्यादा इस्लामी सख्तियां वो देखने में आती नहीं। उनको रब जब्त अपना बढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे वो खला महसूस ना करें और अच्छे घरानों के अंदर बापर्दा बाहिजाब जो हैं उन ऐसे को सहेलियां अपनी बनाएं ताकि उनके वो जो खला है बुरे लोगों के यहाँ जाने का या बुरे दोस्तों से बचाने का, वो नेक और साले लोगों से पूर हो जाए। जब भी कहा जाता है कि बुरा दोस्त एक सांप की मानिंद है, और सांप तो फकत दुनिया का नुकसान करता है, बुरा दोस्त दुनिया और आखिरत दोनों का नुकसान कर देता है। हजरत नूह का जो बेटा था उसकी खराबी की वजह अंबिया के नबी के घर में परवरिश पाई है और इतना तवील अरसा गुजारा है, उसके बाद भी वो नूह का बेटा खराब हो गया सिर्फ खराब दोस्तों की वजह से। तो और इंसान वो भी है ना, रिवायतों के अंदर भी आया कि अपने दोस्तों की पैरवी करता है, दीन अपने दोस्तों के दीन पर होता है। तो ये चंद एक चीजें थी जो कि तरबियती उमूर के लिहाज से बहुत सारी चीजों को बिल्कुल जो है वो नजरअंदाज किया जाता है हमारे यहाँ। तो कोशिश करनी चाहिए कि इन छोटी छोटी बातों को दिमाग के अंदर रखें ताकि सही तौर पर बच्चों की तरबियत हो सके और बाकायदा सही तौर पर इमाम ज़माना की सिपाही बनाने के लिहाज से जिस तैयारी की ज़रूरत है उस तैयारी को हम पूरा कर सकें। इंशाल्लाह सिर्फ दो गुफ्तगू हमारी और रह गई, उसमें मज़ीद तरबियती उमूर को आगे बढ़ाएंगे। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन।
الجن يا صاحب السماء الجن.